We're here at Menards Bag Sale, asking shoppers what they're putting in the bag to get 15% off.
Paint.
Batteries.
Tools.
Toilet paper.
Extension cords. Grocery items.
Hardware for my cabinets.
Snack items. Crackers and some canned good stuff.
Shop vac supplies.
Toothpaste, cereal, coffee, dog treats. I've got a lot of stuff to grab.
The list goes on, but the sale ends January 24th. Hurry in for Menards 15% off bag sale. See store for complete details.
Save big money at Menards.
हेलो एवरीवन, एक बार फिर साकिब और साहिल तैयार हैं एक फिल्मी बातचीत के लिए. और आज का हमारा टॉपिक है यशराज फिल्म्स की कहानी डर, जो 1993 क्रिसमस पे रिलीज हुई थी. और इस फिल्म को एक वायलेंट लव स्टोरी करके टैगलाइन दी गई थी. और ये उन फिल्मों में से है जिनके बारे में जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि इनकी परछाई बढ़ती जाती है. और कैसी किस तरह के किरदार को इस फिल्म ने अंजाम दिया वो हम सब जानते हैं कि आज फिल्मी दुनिया, आई थिंक वर्ल्ड वाइड, सबसे जो एक जाना माना सितारा है शाहरुख खान, उनकी एक तरह से एंट्री तो नहीं कहूँगा, उनकी एक तरह से एक शुरुआत की फिल्मों में से है जिससे उनका लेजेंड और उनके सफ़र की शुरुआत हुई. और साहिल, मुझे पता है तुम्हारी भी ये फेवरेट फिल्मों में से, और हम ज़्यादातर फेवरेट फिल्में ही करते हैं यहाँ पर, तो शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की. ये बताओ डर क्यों चुनी, और फिर आई थिंक शुरू में एक कस्टमरी ओपनिंग क्वेश्चन तुम्हारा भी होगा मेरी तरफ, और लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड.
थैंक यू साकिब भाई। डर क्यों चुनी? डर जहाँ तक मुझे याद है, मेरी जो पहली मेमोरी है शाहरुख खान की, उसमें दीवाना और जितनी भी वो शुरुआत की उनकी फिल्में हैं सब थिएटर में देखी थी। पर मेरे पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ा था वो मुझे याद है बाजीगर थी और फिर डर, और ये आसपास ही आई थी दोनों फिल्में, और उसके बाद फिर कभी यहाँ कभी ना और अंजाम। तो डर एक ऐसी फिल्म थी जो हमारी फैमिली ने 2 बार देखी थी थिएटर में, क्योंकि मेरी फैमिली में सब शाहरुख खान फैंस हैं तो हम 2 बार देखने गए थे ये फिल्म। और जहां तक मुझे याद है, जब मैं दोबारा भी अभी ये फिल्म देख रहा था तो मुझे शाहरुख खान का परफॉर्मेंस ही याद था। मुझे बाकी सारी चीजों में ध्यान देना पड़ा फिर से, कि जो बाकी चीजें हो रही हैं फिल्म में, लेकिन शाहरुख खान की बहुत सारी चीजें जो मुझे पसंद आई थी और उनकी एक्टिंग और जो कहानी भी, वो सब मेरे जहन में बिल्कुल बसा हुआ था। तो मुझे, मेरे लिए तो काफी यादगार फिल्म है। पर हाँ, जैसे दोबारा देखी तो काफी, आप फिर जब थोड़ी बारीकी से और देखने की कोशिश करते हैं कि इस पे बात करेंगे तो हाँ, कुछ कमियां दिखती हैं और उस पे बात करते हैं। पर मैं आपसे सबसे पहले एक आप पे एक सवाल दाग देता हूं, और पहले तो आप इसकी कहानी बता दीजिए संक्षेप में, और उसके बाद मेरा आपसे सवाल रहेगा कि वर यू रूटिंग फॉर शाहरुख खान इन द फिल्म? क्योंकि मुझे बड़ी कश्मकश थी बचपन में, और मेरे आसपास भी ये देखा था, और आपने भी आई एम श्योर ये नोटिस किया होगा। तो पहले तो कहानी बताइए और फिर मुझे ये बताइए कि क्या आप शाहरुख खान के राहुल को रूट कर रहे थे फिल्म में?
हाँ, तो कहानी तो इसकी बताना एक यानी कि रूटलेस एक्सरसाइज है, पर मेरा ये मानना है, और शायद सब इससे सहमत हो, कि या हिंदी फिल्म पॉप कल्चर कहें या हिंदी फिल्म की पिछले 30 साल की हिस्ट्री, जो भी फैंस हैं, जो मेरी उम्र के हैं मुझसे छोटे हैं, तुम्हारी उम्र के हैं तुमसे छोटे हैं, अगर कोई हिंदी फिल्म देखता है, चाहे वो रणबीर कपूर फैन हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन फैन हो, उसने ये फिल्म ज़रूर देखी होगी. ये एक मस्ट वॉच फिल्म लिस्ट में है. और जितने लोग बड़े भी हो रहे हैं, आई थिंक उन सब ने फिल्म देखी होगी, क्योंकि इस फिल्म का एक एक एसेंस है कि इसकी बात की जाती है, अरे तुमने डर नहीं देखी, वो ज़रूर देखो. राइट, कोई पूछे आज, कोई कोई आज 12 साल का बच्चा हो, पूछे भाई शाहरुख खान की मैंने जवान पठान देखी है, पर मैं कौन सी फिल्म देखूंगा, तो सबसे पहले जो 5 फिल्में होंगी उसमें आई थिंक बाजीगर डर का जिक्र होगा. किस ऑर्डर में? मेरे ऑर्डर में बाजीगर का जिक्र नहीं होगा, बट आई अंडरस्टैंड कि बाजीगर और डर एक दो पिलर्स हैं शाहरुख खान के स्टारडम के. तो कहानी तो कुछ ऐसी है, सबको पता है कि ये एक वायलेंट लव स्टोरी का टैग दिया गया था प्रोडक्शन टीम ने इसे. तो शुरू में ही जब जूही चावला अपनी कॉलेज वेकेशन के लिए घर जा रही हैं शिमला में, जो कि शायद स्विट्जरलैंड में है, क्योंकि ऐसी ट्रेन्स आई डोंट थिंक मैंने कभी इंडिया में देखी नहीं तब, तो वहाँ पे बस ये बैकग्राउंड में एक नरेशन की जाती है कि प्यार जब हद से गुजर जाए तो पूजा बन जाता है, और जब पूजा बहक जाए तो जुनून बन जाता है. तो ये जब डायलॉग आता है, और मैं 12th में था, हमारे बोर्ड शुरू होने वाले थे, तो मैंने फिल्म सिनेमा में देखी थी, ये आपको ग्रिप कर लेता है बिल्कुल कि क्या होने वाला है। तब मुझे नहीं याद कितना ट्रेलर हमने इस फिल्म का पहले देखा था। तो बस फिर ये फिल्म है, कैट एंड माउस की है सिचुएशन। शाहरुख खान जो इस फिल्म के एंटेगनिस्ट भी हैं प्रोटैगनिस्ट भी हैं, उस पर भी बात की जाएगी कि ये एक डेफिनेटली एंटी हीरो ओरिएंटेड फिल्म है, क्योंकि कभी हुआ नहीं था एटलीस्ट जहाँ तक मैं मुझे याद है कि किसी हिंदी फिल्म में। मैंने 80s में बहुत फिल्में देखी थी, तो कहीं एक ऐसी कहानी नहीं थी जहाँ एक ऐसा किरदार है जिसकी नज़र से हम एक ऐसी लव स्टोरी, और इस पे भी बात हो सकती है लव स्टोरी है कि नहीं, क्योंकि वन साइडेड स्टोरी ही है। तो बस फिर उसमें सनी देओल हैं और जूही चावला हैं, जो कि दे आर मैडली इन लव विद ईच अदर, और शाहरुख खान एक वो किरदार हैं जो किसी भी कीमत पे अपनी अपने प्यार को हासिल करना चाहते हैं, और वो किन गहराइयों तक गिरेंगे और किन गहराइयों तक उनका जुनून उभर के आएगा। और वो पूरी एक कहानी ऐसी है कि उस टाइम साहिल में, ये कहूँगा जब ये कहानी आई थी, जब पिक्चर देखी गई थी दिसंबर 1993 में, पिक्चर की बॉडी में इतने सीन हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये चीज़ हमने देखी नहीं है। मुझे ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है, और मैंने डर शायद 2 या 3 मरतबा देखी थी सिनेमा में उसकी पहली रिलीज में। 2 बार तो डेफिनेटली देखी थी, ओडियन पे और कनॉट प्लेस में लगी थी। और तो इसका इम्पैक्ट बहुत है, आगे जाके इसकी बात करेंगे। और तुमने दूसरा सवाल जो पूछा कि क्या आप इसके लिए रूट कर रहे थे, यार अब ये बहुत वैसा सवाल है, क्योंकि आजकल आप कुछ ऐसा कह देंगे रिकॉर्डिंग में, क्योंकि एंटी हीरो है, इसमें स्टॉकिंग है, इसमें वायलेंस है, इसमें एक वो जो कहते हैं कि बाउंड्रीज मर्यादा को वो जो किरदार है क्रॉस कर रहा है, तो आप उसके लिए कैसे रूट कर सकते हैं। पर अब यहाँ पे मरहूम यश चोपड़ा साहब जिन्होंने फिल्म बनाई है, उन्होंने कहानी राहुल के वेंटेज पॉइंट से ज़्यादा दिखाई है। सनी देओल कहने को इस फिल्म के हीरो हैं, और उस जमाने में एक वो परिभाषा, एक डेफिनेशन थी कि जिसको लड़की नहीं मिली फिल्मों में या जिसको प्यार नहीं मिला वो मर जाएगा, चाहे मुकद्दर सिकंदर का अमिताभ हो, अनलेस यू नो कभी कभी हो जहाँ पे उन लोग दो किरदारों की डिफरेंट जगह शादियां हो गई हैं एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, एक स्ट्रगल के बाद दे रियलाइज की जो उनके पार्टनर्स हैं, डर में एक नई चीज उभर के आई थी कि यहाँ पे उस कैरेक्टर ने गाने भी गाए हैं, और उस कैरेक्टर में एक मासूमियत भी है कि पता है कि भाई वो एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें थी, अगर आपने इंग्लिश फिल्में बहुत देखी हैं पहले तो शायद आपको ऐसे कैरेक्टर से आपका इत्तेफाक हो, आपका इंट्रोडक्शन हो चुका हो। पर जो उस ज़माने में मेरे दोस्त थे और जो हम सब लोग 12th में थे, और यानी कि मेरे कजन्स भी जो थे, आई थिंक ये हिंदी फिल्मों में एक ऐसा पहला किरदार था, और जबकि 3 हफ्ते पहले ही बाजीगर या 5 हफ्ते पहले दिवाली पे बाजीगर आई थी, पर ये बाजीगर के मुकाबले मेरी नज़र में एक बहुत ही मुख्तलिफ या डिफरेंट जैसे कहेंगे किरदार था। तो इस पे इनका रूट करना, हाँ आई मीन मुझे याद है एक मेरा दोस्त था जो शाहरुख खान के कैरेक्टर के मरने के बाद जब उसको बोट पे मार दिया जाता है तो वो रोया भी था। तो मुझे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, तो फिर हमने बातचीत भी की थी बाद में, तो मेरे दोस्त थे उनके बड़े भाई ने बोला था नहीं ये तो साइको है, या जो भी वर्ड यूज किया था, कैसे तुम इसके लिए रूट कर सकते हो, तुम्हारी बहन के पीछे ऐसे आए या बला बला तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पीछे आए। और उस टाइम हमारी गर्लफ्रेंड्स वगैरह ऐसे नहीं थी, बहुत कम लोग थे इनकी गर्लफ्रेंड्स थी, तो वो बात समझ आ गई थी। बट ये कहना कि पिक्चर से निकल के मैं सोच रहा था कि सनी देओल ने जो कपड़े पहने वैसे कपड़े पहनूं, नहीं, शाहरुख खान ने जो डेनिम शर्ट्स पहनी है वो बहुत पॉपुलर हो गई थी उस जमाने में, तो हम
हाँ
सब, और वो जो उनके जूते हैं जो उन्होंने बूट्स पहने हैं ब्राउन कलर के, भाई अब ये इम्प्रेशनेबल जब लोग हैं, और मैंने पहले ही बोला है, तो मुझे इन चीज़ों का भी दिल्ली में बड़े हो के बहुत सबकॉन्शियसली, फिल्म स्टार ही हमारे वो हैं कि भाई किनको देख के हमने कपड़े पहनने हैं, जब मेरे बाल भी थे तो बाल भी कैसे रखने हैं। तो शाहरुख खान एक एक वो इमेज छोड़ दी थी। हाँ मैं घुमा फिरा के बात कर रहा हूँ, पर आई थिंक इस पर मैं तुम्हारा व्यू जानना पाऊंगा, क्योंकि आखिर में तो जब वो पुलिस वालों को गिरा देते हैं लिफ्ट से, और आगे जाके फिर आखिर में सनी देओल को छुरा भी मारते हैं, फिर तो आपको पता है कि ये आदमी बिल्कुल ही गलत है और इनका मेंटल संतुलन, तब हम ऐसी बातें ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करते थे कि वो सही नहीं है। पर कहीं ना कहीं यश चोपड़ा साहब ने भी जब एंड में वो मर जाते हैं, वहां वो गाना चलता है सैड वर्जन ऑफ जादू तेरी नजर, और फिर वो कहते हैं किरण कभी मुझे मुझे याद करना तो कभी नफरत से याद ना करना, मैं बुरा हूं,
हाँ
मैंने जो
ये
भी है
गलत
वो
मत
एक,
समझना।
हाँ तो वो एक, अब मुझे नहीं पता कि ये यश चोपड़ा साहब भी थोड़े से सिंपथाइज कर रहे थे अपनी कहानी में, एक्चुअली उन्होंने एंड में तो सनी देओल ने किरण की जो उनकी स्टटरिंग है उसका मजाक उड़ाया और दिखा दिया कि भाई किसी को परवाह नहीं है, राहुल को छोड़ के वो लोग आ गए और किसी ने पूछा भी नहीं, दिलीप ताहिल तक को नहीं दिखाया कि उनको पता चला उनका बेटा स्विट्जरलैंड में मारा गया है। तो उन्होंने क्लियरली एंड में तो अगर आपने पेपर या फिल्म लिखी है तो ग्लोरीफाई नहीं किया है, बट मरते वाले सीन से लेके वो फिल्म शाहरुख खान की ही फिल्म है, तो ईमानदारी से जवाब देना मुश्किल है कि हम सब किसके लिए रूट कर रहे थे। हमें पता है कि जूही चावला इनसे डर रही है और प्यार ऐसा नहीं होता, वो तो सबको पता है, बट एक अल्फा मेल तो नहीं कहूंगा जो आगे जाके शायद कंपैरिजन निकले, बट पता नहीं सुनने वालों को भी मैंने बोर किया। मैंने खुल के जवाब नहीं दिया क्योंकि खुल के जवाब देना मुश्किल है। तुमने फिल्म कब देखी है? 93 में तुम बहुत छोटे थे, तुमने तो
हाँ
जरूर ये फिल्म बाद में ही देखी होगी क्योंकि तब तो तुम
नहीं, मैंने थिएटर में देखी। मैंने आपको कहा कि मैंने 2 बार देखी है थिएटर में फिल्म। उस समय मैं 6-7 साल का था। मुझे याद है जब हमने शाहरुख खान की हम ज्यादातर फिल्में थिएटर में देखते थे। मेरा ये मानना है कि हाँ, जब मैं बहुत छोटा था, बच्चा था, तो उसमें भी मुझे तो दुख हुआ था। मैं उस समय, आप कह लीजिए कि 6-7 साल का बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता है ना, तो दुख तो हुआ था। पर उसका मुझे अब जो रीजन समझ में आता है कि मुझे क्यों शाहरुख खान पसंद था या मैं रूट कर रहा था, मुझे एक रीजन लगता है कि पहले क्या होता था कि हमारे पास एक गाने, आप जब फिल्म का ट्रेलर देखते थे और उसके साथ आप एक ऑडियो कैसेट ले आते थे और एक गाने चलते थे आपके फिल्म में, मतलब आपके घर पे, तो जो है, तो वहां पे जादू तेरी नजर और तू मेरे सामने, वो गाने हमें इतने पसंद थे घर पे कि वो गाने चल रहे हैं। तो आपको कहानी तो उतनी पता नहीं है, आपको बस पता है कि एक फिल्म है, डर है ना, उसका कैसेट आप लेके हैं, आप गाने सुन रहे हैं और आपको गाना बहुत पसंद है। और मुझे लगता है कि फिल्म के जो 2 बेहतरीन गाने हैं वो शाहरुख खान के ऊपर हैं, और ऑब्जेक्टिवली भी मैं अगर सोचूं तो दे आर द बेटर सॉन्ग्स, और आज भी वो गाने बहुत अच्छे हैं। तो एक तो ये था कि वो गाने आप गाते थे और आपको मतलब नहीं पता है कि तू हाँ कर या ना कर, जो कि अगेन एक प्रॉब्लमेटिक तो मेरे को लगता है वहां से भी हमारा जो एक क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग होने लगती है कि आप जो फिल्म का आपने समझ लिया है कि शाहरुख खान है उस पर और वो गाना उदित नारायण की आवाज में है, तो वो सब चीजें अगर आप फैक्टर को देखें तो मेरे को लगता है वो बहुत गहरा आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है आप फिल्म देखने के पहले ही, जब आप थिएटर में गए हैं। कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उसको रूट कर रहा था, ये कहना गलत होगा, कि वो था तो बिल्कुल विलन और वो सारे गलत काम कर रहा था, मार रहा था, स्टॉक कर रहा था और डरा रहा था। और फिल्म में भी मैं बिल्कुल ये बात कहूंगा कि फिल्म भी उस चीज को लेके काफी कंसिस्टेंट है अपनी स्टोरी कहने में। लेकिन ये शायद हमारा जो परसेप्शन है एक सोसाइटी का, कि जो हीरो जिसको हम देखते हैं, हम कहते भी हैं कि इस फिल्म का हीरो है, हम कभी अब प्रोटैगनिस्ट या एंटागोनिस्ट हम नहीं कहते, राइट, कि है, हम हमेशा कहेंगे कि भाई फिल्म में हीरो कौन है, हीरोइन कौन है। तो वहां पे मुझे लगता है कि शायद उस वे में हम देखते हैं कि शाहरुख खान की एक इमेज भी उस समय उभर के आ रही थी, तो कहीं ना कहीं हम जब हम फिल्म पे भी किरदार देख रहे हैं, जो हमने पहले भी कहा है बात कि लोग बहुत सालों तक अमजद खान का नाम नहीं जानते तो उसे गब्बर सिंह ही कहते थे, तो ये एक प्रभाव बहुत छोड़ता है कि जो स्टार्स होते हैं या जो बड़े एक्टर्स हैं, हम कह रहे हैं जो बहुत पॉपुलर एक्टर्स हैं, और शाहरुख खान मुझे लगता है कि उस श्रेणी में आ चुके थे अपनी 3-4 फिल्मों से ही, कि उन्होंने वो, मैं कहूंगा कि मंत्रमुग्ध कर दिया था ऑडियंस को, तो उसका एक प्रभाव था। और जो एक, मुझे लगता है एक दूसरा कारण भी है कि हम शाहरुख खान के लिए शायद जो थोड़ी सी हमारी सिंपैथी बन रही थी, मुझे लगता है वो उसका एक थोड़ा सा ब्लेम आप कह लीजिए या जो भी शब्द यूज करना चाहें, राइटिंग पे भी जाता है। मुझे लगता है कि जो सनी देओल का कैरेक्टर है वो बड़ा अनबेक्ड सा है और उस पे उतनी मेहनत नहीं की गई है जितनी मेहनत शाहरुख खान के कैरेक्टर को लिखने में की गई है, क्योंकि आप पूरी कहानी एक पॉइंट ऑफ व्यू, शाहरुख खान के पॉइंट ऑफ व्यू से सुना रहे हैं। वहां पे मुझे लगता है कि एक, अगर आप सनी देओल का कैरेक्टर को आपने बहुत हाफ बेक्ड, इवन दो बहुत ही प्लेन कैरेक्टर है, राइट, उसमें ही इज अ गुड कैरेक्टर, वो नेवी ऑफिसर है, वो कुछ गलत नहीं कर रहे, राइट, ही इज प्रॉबेबली लाइक वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम हम कहते हैं वैसा
गुड
टाइप
बॉय,
का बंदा उसको दिखाया
गुड
गया है
बॉय।
ना। तो अगर मे बी वहां पे आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके आप ग्रे शेड दिखाते, बट आप थोड़ी वल्नरेबिलिटी या जो आप लेके आते हैं ना, तो या तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सीन्स लाते, तो वहां पे मुझे लगता है कि शायद हम वो शाहरुख खान को उतना सिंपेथाइज नहीं करते, क्योंकि ऑल थ्रू आउट द फिल्म में जब मैं दोबारा भी देख रहा था, मुझे लगा कि हर फ्रेम में जब शाहरुख खान है फिल्म में तो मेरा इंटरेस्ट बंधा हुआ है, पर बाकी जब भी कहीं सीन्स हो रहे हैं सनी देओल और जूही चावला के, अनुपम खेर के, या तो वहां पे मेरा ध्यान थोड़ा भटक भटक रहा है, और मुझे लगता है स्क्रिप्ट भी ऊपर नीचे है वहां पर, क्योंकि वो कहानी बिल्कुल आप शाहरुख खान की कह रहे हो और 2 घंटे 56 मिनट की फिल्म, खास करके अगर मैं थिएटर में देखूं तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगी कि नहीं फिल्म में सही नहीं है। बट जैसे कि आपने शुरू में कहा और मैं बार बार कह रहा हूं कि
यार पर
ये शाहरुख खान की आप ग्रेटनेस कह लीजिए या फिर उनकी जो नेचुरल एक टैलेंट था उनका, कि वो बिल्कुल आपको हर फ्रेम में मुझे दिखता है, कि जब वो फिल्म में है तो मेरा ध्यान बिल्कुल उन पे रहता है, कि और शायद वो जब नहीं भी है तो फिर ये लग रहा है कि हाँ उसको दिखाओ वो क्या करने वाला है, वो क्या करेगा नेक्स्ट, या उसकी क्या अगली चाल होगी, या वो कैसे इसको हैंडल करेगा।
मैं इस
तो
बात पे इतना
हाँ
सा एक चीज़ क्विकली जल्दी से कहना चाहूँगा, जैसे कि हमने बहुत बार सुना है कि भाई नसीर साहब के बारे में होता है, आमिर खान के बारे में होता है, कि कई एक्टर उनकी चॉइसेस से डिफाइन होते हैं, और मैं इससे सहमत नहीं हूँ, पर ये सही है, ये कुछ बातें हैं जो लोगों ने डिस्टिंग्विश करके कैटेगराइज कर दिया है। तो यहाँ मैं शाहरुख को बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा कि उनका आगाज़ हमारी स्क्रीन्स पे फौजी और फिर दूसरा केवल, मैंने पहले ही बात की थी आई थिंक जो जीता वाले एपिसोड में, तो ये दो शो थे, मैंने सर्कस नहीं देखा था, तो वो दिल्ली के ही हैं तो काफ़ी लोगों को पता था, और जामिया में गए हैं तो उनके टैलेंट का एक 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 परिचय तो हो गया था ऑडियंस से, पर जो उन्होंने फिर बाकी दीवाना में ज़बरदस्त एंट्री की और फिल्में की, पर ये जो बाजीगर डर और कभी यहाँ कभी ना का फेज़ है, आई थिंक जो इनकी ये शायद 8वीं 9वीं और 10वीं फिल्में हैं, बीच में एक फिल्म में इन्होंने कैमियो भी किया था उसको गिना जाए तो, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सुनील गावस्कर के 774 या सचिन का जो ओल्ड ट्रैफर्ड में 100 है, ये इनका डिफाइनिंग फेज था, जहां से इन्होंने मुझ जैसे फैन को एक 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 पक्के फैन में तब्दील कर दिया, और उस वक्त आपकी उम्र भी, वो जनरेशन थी, हम देख रहे थे, इनका आगाज हमारी वॉच पे ही हुआ था, जैसे आमिर खान ने दिल है कि मानता नहीं, जो जीता वो सिकंदर का जो दौर था, तो और इसमें इनको क्रेडिट भी बहुत दिया जाएगा क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारे लोगों को फिल्म ऑफर की गई है, जो हमने पढ़ा है और सुना है यूट्यूब इंटरव्यूज वगैरह में, और ये बड़ी जानी मानी बातें हैं, तो एक एक तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी का इनको बिल्कुल जितने इनकी तारीफ की जाए, क्योंकि इन्होंने एक तरह से नक्शा बदल दिया बॉलीवुड का और अपनी अपनी किस्मत का भी, बट वो एक रिस्क टेकिंग फीचर था इनका, जो शायद अंजाम में मेरा मानना है थोड़ा ओवर किल था, बट एट द सेम टाइम किसी को मैं जज नहीं करूंगा कि उस टाइम भी अपना ये वजूद जमा रहे थे, और जैसे इन्होंने लक बाय चांस में कहा था कि शुरू की फिल्में आपको चुनती हैं, बाद की फिल्में आप चुनते हो, इन्होंने तो कहा था पहली फिल्म, पर मैं कहूँगा शुरू की फिल्में, उस टाइम मेरा इस मानना है कि इनको आए हुए 2.5-3 साल ही हुए थे, और डर जैसा रोल कर बैठना, जो संजय और आमिर खान जैसे बड़े बड़े नामों ने उस रोल करने से इनकार किया था, तो वो रोल पे मैं इनको बहुत क्रेडिट दूंगा। हाँ, और दूसरी बात, जो तुम्हारा पहला सवाल है, मैं उस पर फिर वापस लौट के जाऊंगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आई थिंक ये सोसाइटी के नज़र से आज भाई 2024 है, हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, कितनी अवेयरनेस है, जो आज 17-18 साल का युवक होगा इंडिया में या कहीं पे भी, उसको बहुत ज़्यादा मालूम है कि आज इन्फॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है, ये सबको पता है, हम डेटा टेक्नोलॉजी के एज में हैं, फ़ोन से बैठ के लोग क्या क्या करते हैं, शायद स्कूल में भी लोग फ़ोन लेके जाते होंगे, मुझे तो पता नहीं इंडिया में क्या हो रहा है, बट बच्चों के पास फ़ोन है, हम लोग, हमारे घरों में लैंडलाइन नहीं थी सबके घरों में, तो उस दौर में आके हमारी नॉलेज इतनी ज़्यादा है, हम किसी चीज़ में व्हाट अबाउटरी में अमेरिका से कंपेयर कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर कर देंगे, और मैं भी करता हूँ, वेस्टर्न सोसाइटी से कंपेयर करेंगे, और इंडिया में ही इंडिया को सिटी से, स्मॉल सिटी से कंपेयर कर देंगे, बट ओवरऑल ये जो कंडीशनिंग का जो है उस हिसाब से बॉलीवुड और सोसाइटी जहाँ थी वहाँ ऐसी फिल्म यश चोपड़ा ने बना दी, चाहे दिख बनाई राहुल के माध्यम से ही है, पर आखिर में जो आई थिंक वो बहुत स्मार्ट मूव थी, जो आखिर में सनी देओल उनको मॉक करते हैं एयरपोर्ट पे, वहां उन्होंने चोपड़ा ने एक तरह से जैसे आखिर में ठप्पा लग गया कि भाई जो भी है गाना गाया है सब कुछ किया है, मैंने राहुल को सेलिब्रेट नहीं किया है, एंड वी कैन आर्ग्यू ऑल डे लॉन्ग कि फिल्म के बीच में जो हो रहा है वहां लग रहा है कि हम सब 99.9% लोग उस टाइम राहुल के नजरिए से ही फिल्म देख रहे थे, और ये बहुत
हाँ
पावरफुल है, जो तुमने भी कहा ना कहानी में जो गाना होता है, चाहे वो लोगों को मार रहा है, पर आपसे शुरू में उसका जो इंट्रोडक्शन कराया गया है, आपको लगा यार ये बहुत शर्मीला किस्म का इंसान है, प्यार करता है, छुप छुप के पीछे से रह रहा है, कहीं ना कहीं कई लोगों ने सोचा हो ये तो मेरी कहानी है, बट देन इट बिकम्स डार्क, नहीं ये मेरी कहानी नहीं है, हमने किसी पुलिस वाले को लिफ्ट से नहीं गिराया, हमने किसी को मारा नहीं है, ये वो। तो और साहिल तुमने भी बहुत हिंदी फिल्में देखी हैं, जैसे कितनी पुरानी फिल्म हमने देखा है, किसी रियासत का राजकुमार किसी राजकुमारी से प्यार करता है और वो विलन होता है और उसको मार दिया जाता है और उसको उसकी मोहब्बत नहीं मिलती। तो ऐसा नहीं है कि पहले लोगों ने ट्राई नहीं किया, पर ये कहानी एक एंटेगनिस्ट, एक एक विलन अगर कहें, उसके नजरिए से है, तो ये बहुत बड़ा डिपार्चर था हिंदी स्टोरी टेलिंग में, जहाँ अमिताभ बच्चन का सिनेमा खत्म होने वाला था, उनकी पीक ये हो चुका था और अनिल कपूर और संजय दत्त का दौर चल रहा था, हमने पहले ही बात की है। तो वहां आके ऐसे कहते हैं कि जो इसमें लाइन है, मांग लूंगा मैं तुझे आसमां से या जो भी है, तो आई थिंक अगर उसकी फिगरेटिव वो ली जाए तो उन्होंने अपनी किस्मत तोड़ी है वहां। अगेन लोग कहेंगे मैं बहुत ज्यादा फिल्मी और भावुक हो रहा हूँ, तो और इस
हाँ
दौर का
उस समय
शाहरुख
में
खान था, तो आई थिंक ये इन्होंने जिस जो भी बंदा ये फिल्म करता उसको एक क्रेडिट दिया जाता, क्योंकि इस फिल्म में एक रिस्क बहुत था। अब लोग कहेंगे भाई शाहरुख के पास गंवाने में कुछ नहीं था, पर मैं हमेशा मानता हूँ जो एक यंग एक्टर आता है, जो मैंने कही पहले बार बोला है, उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, उसकी नेचुरल एबिलिटी पहले 15-16 फिल्मों में दिखती है, और ये जो 3 फिल्में मैंने ली है, और डर मेरे लिए इसमें एक्टिंग की पीक है, जबकि कभी ना कभी ना मेरी फेवरेट फिल्म है, और बाजीगर मेरे लिए इन 3 फिल्मों में नंबर 4 है, क्योंकि मैं बाजीगर फैन नहीं हूँ। तो मेरे फादर और बहुत जानने वालों को बाजीगर पसंद है, शायद तुम्हें भी हो, मुझे बाजीगर में कुछ ऐसा लगा नहीं कि भाई वो टाइमलेस तो बिल्कुल नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, डर टाइमलेस है कि नहीं?
तो मुश्किल सवाल है, पर शाहरुख खान का मैं जैसे परफॉर्मेंस जब देख रहा था, कुछ चीजें मुझे लगी कि शायद अब 30 साल बाद अगर वो करें या शायद 15 साल पहले करते, तो कुछ चीजों में मुझे लगता है कि शाहरुख खान हाँ थोड़े से टोन डाउन होके या थोड़ा सा मतलब और कुछ उसको डिफरेंटली करते। फिल्म मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि टाइमलेस है, क्योंकि फिल्म में बहुत सारी कमियां हैं, पर शाहरुख खान का परफॉर्मेंस टाइमलेस है। मे बी यस, मैं कहूंगा कि उनके शायद उन्होंने ज्यादातर नोट सही पकड़े हैं फिल्म में। उनके जितने भी सीन्स हैं जो मुझे अब याद आ रहे हैं, जो जहां पे मतलब उनका एक स्कोप भी है एक्टिंग करने का, अपनी क्षमता दिखाने का, वहां पे मुझे लग रहा है ही इज प्रीटी सॉलिड। और खास करके जो फिल्म का मैं अगर कहूँ, फिल्म का अगर आकलन करें, तो आखिरी का जो आधा घंटा है मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा है फिल्म। वहां पर फिल्म बहुत अच्छी है आधे घंटे में, लेकिन उसके पहले जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि बहुत ऊपर नीचे है। जो जो कुछ चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं कि जो जैसे कि अगर शाहरुख खान के कैरेक्टर की बात करें, तो जो उनकी जो एंट्री है, एक तो वो गाने में आप सुन लेते हैं कि वो गाना गा रहे हैं वहां पे, बाद में पता चलता है कि वो गा रहे थे और सुनील नहीं था, पर जो वो ऊपर खड़े हैं बिल्डिंग पर और वो पेटल्स तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, मुझे वो चीज बड़ी अच्छी लगी कि वो जिस तरह से उनका कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है कि वो कितना ऑब्जेस्ड है बंदा, और ही इज, आपको एक झटके में समझ में आ जाता है कि लाइक ही इज अ साइको, है ना, कि ये बंदा लाइक कुछ भी करने को तैयार है उस लड़की के लिए। और भी हैं काफी चीजें जो मुझे पसंद है फिल्म में, जैसे कि एंड हमने पहले भी बात करी कि जो चेस सीक्वेंस है सनी देओल और शाहरुख खान का, मुझे नहीं लगता है कि वैसा चेस सीक्वेंस हमने उस समय, मतलब जब मैंने फिल्म देखी थी तो मेरे लिए तो बहुत ही नया था, और पहले अगर रहे भी होंगे तो मेरे जहन में हमेशा वो चेस सीक्वेंस एक बहुत गहरी छाप छोड़ के गया था कि वो 2-2.5 मिनट का चेज है, भाग रहे हैं और बिल्कुल आपका इंटरेस्ट बना रहता है। उसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें हैं कि मुझे लास्ट में जो मैंने कहा आधे घंटे में, एक जब पहली बार सनी देओल को पता चलता है कि राहुल ही कल्प्रिट है, तो वो जब उसके लिए विस्की लेके आता है, और वहां पे वो जो वल्नरेबिलिटी है शाहरुख खान की, प्रॉबेबली उस कैरेक्टर की वहां पर फर्स्ट टाइम है जहां पे वो आपको थोड़ा वल्नरेबल दिखता है, तो वो भी मुझे एक अच्छी चीज लगी राइटिंग की, कि क्योंकि वहां तक वो बिल्कुल डार्क था, वहां पे वो पहली बार आप थोड़ा सा उसको वो कर रहे हैं कि जब वो अपने जोन में है तो वो फिर वो शायरी वायरी कर रहा है और थोड़ा सा अपना रियल सेल्फ दिखा रहा है, कि मतलब अदरवाइज ही इज वेरी डार्क, बट वहां पे आप थोड़ा सा आप उसको मे बी वहां पे थोड़ी सी सिंपैथी या उसके यू कैन फील फॉर एट दैट पॉइंट, कि वहां पे वहां तक जो भी उसने करा है।
मैं जल्दी से आना चाहूंगा, अगर तुमने अपना पॉइंट खत्म किया है तो जो टाइमलेस वाली बात है, मैं इस बात को थोड़ा ट्विस्ट करूंगा, और मैं ये नहीं कि मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, चलो शायद सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस फिल्म को उस नज़रिए से देखूंगा, असल में अपने आप को भी कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि हमने हर फिल्म को पहले टाइमलेस के नज़रिए से देखा है, पर कई कुछ फिल्में ऐसी हैं या जैसे एंट्री पॉइंट है आपकी आपकी अपनी ट्रेजेक्ट्री में एक एक फ़ैन की नज़र से। तो ये फिल्म और दो एक अंग्रेज़ी फिल्में हैं जिन्होंने मेरा मेरी ट्रेजेक्ट्री बदली, जैसे कि मैंने कसिनो और 795 में अमेरिका आके देखी थी। मैंने ऐसी इंग्लिश फिल्में नहीं देखी थी कभी, मैंने शायद मुट्ठी भर 10 या 12 फिल्में देखी होंगी इंडिया में, और ब्रूस ली और मेल गिब्सन की, जो कि इतने अच्छे, उनको कोई गिनेगा नहीं डीप फिल्म बनाने वालों में, तो स्टलोन इन ऐसे, तो ऐसे एक्टर्स की फिल्म। तो सिमिलरली हिंदी फिल्में मैंने बहुत देखी थी, दीवार वगैरह मैंने तब देखी थी, वो एक डेकेड पहले आ चुकी थी, साल में पैदा हुआ उससे पहले दीवार आ चुकी थी। पर जब मैंने डर देखी तो मैं ये मानता हूँ आगे जाके एज अ सोसाइटी हम आज बैठे रिव्यू करें तो हम कई चीज़ें चेक करें, कई चीज़ें डिलीट करेंगे। कुछ फिल्म मेकिंग टेक्निक जैसे हमें पता नहीं, पर एज अ फैन हम इतना ओटीटी कंटेंट देख चुके हैं तो कुछ फिल्मों में कुछ नज़रिए से हम कहेंगे भाई ये चीज़ जो है ये गलत थी, इसका फैट ट्रिम कर दिया जाए, 2 घंटे 56 मिनट की फिल्म की बजाय 2 घंटे 22 मिनट की फिल्म हो सकती थी। और वो हो सकता था अगर नीतीश भारद्वाज ने रोल किया होता सनी देओल की जगह तो उनको इतने गाने नहीं दिए गए होते, ना उनको शुरू में वो नेवी वाला सीन दिया गया होता, बच्चों को बचा रहे हैं, वो सीन मुझे बिल्कुल अब कुछ इंटरेस्ट नहीं है उन सीन्स में। और दूसरा मैं ये मानता हूँ कि इम्पैक्ट जो होता है ना फिल्म का, जैसे अब पता नहीं सुनने वाले ऐसा करते हैं कि नहीं, या तुम ऐसा करते हो कि नहीं, मैं एक बहुत ही अनोइंग को ऑडियंस हूँ अपने घर वालों के लिए। जब भी मैं कोई फिल्म देखता था उन दिनों में, और बहुत साल तक चला है सिलसिला, आई लाइक टू बिलीव, अब नहीं करता मैं फिल्म देखी अगर मैंने, तो फिर मैं घर पे वीडियो या डीवीडी पे दिखाई या अपनी सिस्टर को या कजन को लेके साथ चला गया, तो वहां भी विस्पर करता ये देख अभी सीन आने वाला है, तो मैं दूसरों का इतना मजा खराब करता, पर मेरी अपनी एक्साइटमेंट थी, जैसे मैं एक जगह पहले पहुंच चुका हूँ तो बता रहा हूँ। तो डर में ऐसी मोमेंट्स बहुत थी, ये कहानी पूजा बहक जाए वो वाला सीन, फिर जो तुमने चेज की सीन की बात की है, 2 मिनट 15 सेकंड का वो सीन है जो ज्वेलरी शॉप के बाहर राहुल का किरदार सनी के सुनील किरदार को गोली मारता है, फिर वो उसके पीछे पड़ते हैं, और फिर होली का सीन उससे पहले जो होता है, तो वो जो कैट एंड माउस चल रहा है, फिर उनके घर में आके पता चलता है कॉल टैप हो रही है, वो ऊपर के कमरे से फोन कर रहे थे, चाहे चीजें लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर ये जो कैट एंड माउस सीक्वेंस है राहुल और सुनील का किरण को लेके, ये बहुत इम्पैक्टफुल था, क्योंकि ऐसा आपने कुछ देखा नहीं होता, तो आप घर आके दोस्तों से फैमिली मेम्बर से शेयर करते हैं। तो और मेरे पेरेंट्स ने तो शायद डर वीडियो पे ही देखी थी, तो जब उनके साथ मैंने देखी थी, मैं फिल्म 4 बार देख रहा हूँगा, तो इससे बोलता मैंने कितना अपना टाइम जाया किया इन फिल्मों पे, कि मैंने डर भी 4 बार देख ली थी आई थिंक मार्च में जब उसका वीडियो आया था। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो लोग इसको ग्रेड करेंगे जो तुम कर रहे हो कि भाई इट हैज एन एज वेल और कुछ चीजें, हाँ सही है, अनुपम खेर पे भी हम आएंगे, कुछ कॉमेडी सीन्स हैं जो क्रिंज है, बट जो ओवरऑल फिल्म का स्टोरी टेलिंग का जो पॉइंट था वो पहली बार हुआ था हिंदी फिल्मों में। आई एम श्योर कई सुनने वाले कहेंगे कि एक दो पुरानी ऐसी फिल्में हैं जहाँ पे एंटी हीरो है डैनी ने और सुरेश ओबरॉय ने जो केप फियर की रीमेक की थी, पर वहाँ डैनी गाने नहीं गा रहा, डैनी डिनीरो की तरह बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर है, जेल से निकला है और वो बदला लेना चाह रहा है। यहाँ जैसे आप गाना गाते हैं और आप कॉलेज स्टूडेंट बन जाते हैं और आप अच्छे कपड़े पहन के एक नेवी ऑफिसर के बेटे हैं, तो वहीं से एक अंदर से एक आवाज़ आती है सबकॉन्शियसली, ये तो अभी हमारी तरह है, ये तो एक मिडिल क्लास बंदा है हु मीन्स वेल, पर ये शर्मीला है। तो आई थिंक वो सारी चीज़ों के ऐसे जो एक पैकेज था, कहीं से भी डर चाहे इंस्पायर हुई हो, शायद तुम्हें पता भी है किस फिल्म से इंस्पायर हुई है, तो मैं तुम्हें मौका दूंगा बोलने का, पर वो जो फिल्म के 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 40 मिनट है जो शाहरुख खान की एंट्री से लेकर शाहरुख खान के एंड तक है, वो बहुत इम्पैक्टफुल है। तो मैं 31 साल के बावजूद भी, या 30 साल इसकी एनिवर्सरी हो गई है, मैं इतना हार्श नहीं हूँगा कि कहूँगा कि ये इट हैज़ एज वेल। हाँ मैं बाकी सारी चीज़ों को हटा दूंगा, पर जो एक इसका सिनेमैटिक और सोसाइटल उस दौर में जो एक इम्पैक्ट था, आई थिंक वो आज भी कायम है, क्योंकि आजकल के कोई कोई पहली बार देखे शायद उन्होंने बेहतर स्टोरियां देख ली हैं और कहानियां देख ली हैं, तो वो लोग शायद कहेंगे हाँ इसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि कितना ऐसा कंटेंट ओटीटी पे और इंटरनेशनल सिनेमा और इंटरनेशनल टीवी से हमें मिलता है। पर अपनी मेरी पर्सनल जर्नी में मुझे लगता है कि डर का एक मकाम है, और मैं जानता हूँ उसमें कुछ कमियां हैं, पर जो उसका ओवरऑल मैसेज था उस कहानी का, जो अंदाज था कहने का, और जो शाहरुख खान की परफॉर्मेंस थी और यश चोपड़ा की डायरेक्शन थी, मैं उसको काफ़ी ऊपर रखता हूँ आज भी। तो मैं उसको टेस्ट ऑफ टाइम वाले ब्रैकेट में डालूंगा ही नहीं, अगर मुझे पता है कि उसको तुम जैसे इन्विजिलेटर फेल करेंगे तो मैं उसको एक अलग ब्रैकेट में रखूंगा
नहीं, मैं उसे फेल बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, पर
क्योंकि
जैसे मैंने कहा बिल्कुल जो शाहरुख खान का परफॉर्मेंस है उसमें तो एक नॉवेल्टी फैक्टर है कि वैसा आपने किरदार बिल्कुल शायद पहले, अगर हमने बाद में भी फिल्में हम देख लें जो 70s की 80s की, तो उसमें भी आपको वैसे किरदार नहीं मिलेंगे जो शाहरुख खान ने प्ले किया है। पर जब हम, मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप टोटैलिटी में फिल्म देख रहे हैं, जब हम, मैं दोबारा देख रहा था कि अब आई एम श्योर आपने भी किया होगा कि वो कुछ सीन्स हैं और कुछ चीजें हैं जो फिल्म को रोकती हैं, जो फिल्म को एक बिल्कुल आपका इंटरेस्ट हटा देती हैं। अगर शुरू के 10 मिनट, फिल्म के 15 मिनट में आप को आप एंगेज नहीं कर पा रही है आज, खास करके आज के टाइम में, तो मैं उसी पैरामीटर पे मैं कह रहा हूँ कि इट वोंट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। शाहरुख खान का परफॉर्मेंस, जैसा मैं पहले भी कहा कि मे बी येस दैट स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, कि उसमें मुझे ज्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक ऐसा नहीं लगा या फिर कुछ ऐसी चीजें नहीं लगी। हाँ वो डिफरेंट, पर वो तो डिफरेंट आप कर ही सकते हैं कि वो इतना डार्क कैरेक्टर है कि बट ओवरऑल जो भी मैं देख रहा था कि उनको जिस सीन में, मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल मेस्मराइजिंग है उनका परफॉर्मेंस, कि वहां पे मेस्मराइजिंग मे बी इज नॉट द राइट वर्ड, पर हाँ वो आपका अटेंशन कैप्चर करके रखते हैं हमेशा, कि आप देख रहे हैं, आपकी नजर हमेशा है कि अगर सीन में 4 लोग खड़े हैं तो आपका ध्यान शाहरुख खान पर ही है। और मे बी ये शाहरुख खान की, मेरे ख्याल से वो जस्ट डर की बात नहीं है, ये उनकी शायद रेगुलर लाइफ में भी ये चीज एप्लीकेबल है कि अगर शाहरुख खान एक इंटरव्यू दे रहे हैं और 4 लोग बैठे हैं तो शायद आपकी नजर हमेशा शाहरुख खान पे रहेगी, और ये एक उनकी, मतलब एक जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक मैग्नेटिक पावर है उनमें, कि आपका ध्यान उनकी तरफ हमेशा जाता है।
नहीं,
पर
बहुत बहुत
एक्टिंग
बड़े
वाइज भी
स्टार हैं।
मैं इसको काफी हाईली रेट करता हूँ, शाहरुख खान के करियर ट्रेजेक्ट्री में, कि मुझे
और
लगता है कि वन ऑफ हिज ग्रेटर परफॉर्मेंसेज इन फिल्म्स। तो वहां पे मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ शाहरुख खान के परफॉर्मेंस पर, और मैं वहां वो भी आपकी बात समझ रहा हूँ कि वो जिस दौर में वो फिल्म आई थी उस हिसाब से बिल्कुल एक अपने आप में एक नायाब फिल्म है, कि उस तरह के
नहीं
आपने किरदार देखे नहीं है। और आई एम प्रिटी श्योर कि उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा जिन्होंने ये फिल्म छोड़ी कि हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें आपके पास अपनी प्रतिभा दिखाने की बहुत क्या कह लीजिए काबिलियत है उसमें, मतलब आपके पास बहुत स्कोप है कि आप अपना टैलेंट बिल्कुल दिखा सकते हैं, कि रोल आपको एक तरह से खुली छूट दे रहा है जो किरदार लिखा गया है। तो वहां पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पर ओवरऑल मैं मानता हूँ कि फिल्म जब हम टोटैलिटी में देखेंगे तो फिल्म में अगर आपको आगे बढ़ा के देखनी पड़ रही है आज की, कुछ सीन्स मैं स्किप कर देता हूँ, गाना स्किप कर देता हूँ या इसको ऐसे बढ़ा लेता हूँ, वो फिर मुझे लगता है कि वो फिर फिल्म की आप एडिटिंग की कह लीजिए कि वो कमी है, या उसकी लिखाई में थोड़ी कमी है। पर हाँ उस वे में मैंने कहा कि फिल्म हैजंट एज्ड वेल। पर चलिए आगे बढ़ते।
नहीं, मैं एक जादू तेरी नज़र पे भी एक बात कहना चाहूँगा, अगर 2 मिनट
बिल्कुल
लगाएं तो। ये गाना
हाँ
बहुत चला है उस टाइम, और आई थिंक जो भी बिना का गीत माला वगैरह सब पे गाना, वो पायदान वगैरह जो होती थी पहली पे ही रहा है। तो तब मैं 12th में था, तो हमारी स्कूल में स्कूल बसेस थी, तो ज़्यादातर जितने भी लोग स्कूल बस में जाते हैं वहाँ सीनियर कल्चर होता है, तो पीछे की सीट सीनियर्स के लिए रिजर्व होती है वगैरह वगैरह। तो जब मैं 12th में पहुंचा तो और कोई 12th में नहीं था, सारी बस में 11th 10th और बाकी 9th 8th वगैरह के छोटे बच्चे थे। तो उस जमाने में एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी थी कि मेरी सीट बस में रिजर्व्ड होती थी, जब मैं चढ़ता था उस सीट पे कोई बैठता नहीं था। तो ये नहीं कि मैं कोई डराने धमकाने वाला था, आई थिंक वो एक सीनियोरिटी का ट्रेंड था जो चल रहा था, हम अपने सीनियर्स को देते थे। और जो बस के कंडक्टर वगैरह थे वो हम लोगों की फरमाइश पे सुबह ये 2 गाने ज़रूर चलते थे, एक वो फिर तेरी कहानी याद आई का जो तेरे दर पर सनम, और जादू तेरी नज़र। तो ये बड़ी फॉन्ड मेमोरीज हैं, और कभी सोचा नहीं था इस बात को दोबारा कहूंगा भी, और शायद याद भी मुझे डर देखने की वजह से ये आई है। और जब मैंने अभी डर देखी है इस पॉडकास्ट
बिल्कुल
की के लिए, तो ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, म्यूज़िक जैसे तुमने पहले मेंशन कर दिया था, ये 2 गाने तू मेरे सामने और जादू तेरी नज़र, काफ़ी लोगों ने गुनगुनाए हैं और काफ़ी रेडियो पे चले हैं, या सीडीज़ भी आई थिंक उस टाइम आ चुकी थी, डर के टाइम सीडीज़ भी थी कई लोगों के पास, वरना ऑडियो कैसेट तो थे ही। पर हाँ, आगे चलते हैं इस बात को लेके, अगर हम सनी देओल और अनुपम खेर के किरदारों की बात की जाए, क्योंकि उस जमाने में कॉमेडी का ही बहुत रोल था, और ये हम दोनों ने प्रेप में बात भी की थी कि अनुपम खेर के कुछ डायलॉग बहुत क्रिंज हैं, तो मैं तुम्हें मौका दूंगा अनुपम खेर की क्रिकेटिंग एनालिजीज के बारे में बात करने का।
खास करके मुझे अभी पहले तो जब मैंने पहले ये फिल्म देखी थी तो मुझे अनुपम खेर का कैरेक्टर बस इतना याद था कि वो क्रिकेट मैच देखने जाता है और वो इंडिया इंग्लैंड की वो जो 93 सीरीज हो रही है उसकी शूटिंग हुई है, और ये बात बाद में फिर हम जब जब आप बच्चे होते हैं तो आप बड़ा नोटिस करते हो वो क्रिकेट मैच दिखा रहे हैं फिल्म में, और वो फिर बाद में पता चला कि वो लाइव मैच जब चल रहा था शायद उसी समय उन्होंने वो शूटिंग करी है, और वो कुंबले और राजू उस समय बॉलिंग कर रहे हैं। पर बाकी मुझे अनुपम खेर का कैरेक्टर बिल्कुल याद नहीं था। जब मैं दोबारा देख रहा था फिल्म और मुझे इतना याद था कि हाँ वो बड़े क्रिकेट के शौकीन रहते हैं, तो उनके जो डायलॉग्स थे, और मुझे अब ये दिक्कत लग रही है फिल्म से क्योंकि एक सीरियस फिल्म है, आप एक दिखा रहे हैं जो जो टाइटल है फिल्म का डर, कि आप हर मोमेंट पे मुझे लगता है कि वो ऑडियंस वो एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई आपको ये बंदा जो है राहुल मेहरा वो क्या कर सकता है, राइट, वो किस हद तक जा सकता है। आप देख रहे हैं कि वो घर पे, आप जैसे आपने बताया कि वो उसी घर में दूसरे फोन से कॉल कर रहा है, फिर वो पुलिस वाले को मार रहा है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि वो होली पे घर पे पहुंच के गुलाल लगा रहा है ना। तो मुझे जो थोड़ी सी अटपटी चीज लगी जब मैं दोबारा देख रहा था, जो अनुपम खेर का हमारा शायद वो 90s का एक उस समय चलन था कि हमें कॉमेडी डालनी ही होती थी, कि जॉनी लीवर हम सबको पता है कि हर फिल्म का एक हिस्सा होते ही थे, हर दूसरी तीसरी फिल्म का जॉनी लीवर के बिना नहीं बनती थी, पर वो उन फिल्मों में चल जाता था जैसे कि आप कह रहे थे कि अपने आप में एक नायाब फिल्म है डर। तो डर जैसी फिल्म में मुझे लगता है कि बड़ी वीक करती है वो कहानी को, और जब आप कह रहे हैं इतनी कह रहे हैं इतनी टाइट कहानी जब आप कह रहे हैं और आप थोड़ा सा उसको लाइट कर देते हैं, मुझे लगता है कि हम जो फिल्मों की बात कर रहे थे, मुझे मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि डेड, मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें उदय चोपड़ा कह रहे हैं कि उन्होंने और ऋतिक रोशन ने डेड काम देखी थी और वहां से ये स्टोरी थोड़ी इंस्पायर्ड हुई, और मुझे तो इसमें केप फियर की भी बहुत झलक दिखती है डर में। तो अगर मैं उन फिल्मों की अगर हम बात करें और खास करके केप फियर की, तो आप देखेंगे कि उस बिल्कुल लाइटनेस नहीं है उस कहानी को कहने में। यहां पर मुझे लगता है कि जैसे ही अनुपम खेर का कैरेक्टर आता है वो बिल्कुल एक सीरियस माहौल में, और सीरियस माहौल में समझ सकता हूं कि अगर वो एक ऐसी फिल्म होती कि आप घर पे बात कर रहे हैं या कुछ हो रहा है तो आप कुछ कॉमेडी कर रहे हैं, आप ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट वुड हैव बीन अंडरस्टैंडेबल। पर यहाँ पे वो उसको टॉर्च मार के जाता है जूही चावला को, और फिर वो आके क्रिकेटिंग रेफरेंसेस दे रहे हैं, लाला अमरनाथ कह रहे हैं, फिर जब उनको पता चलता है कि अनु अनु कपूर की ने सुसाइड कर लिया है, अपेरेंट सुसाइड जो कि शाहरुख खान ने मारा है उन्हें, तो वो जब पुलिस वालों ने आके कहता है तो वो कहते हैं अच्छा हीट विकेट हो गया। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा बिल्कुल, आप जब फिल्म देख रहे हैं तो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट रिस्पॉन्स, कि अगर आपकी मेरी
पर
बहन
साहिल
आपको
ये,
स्टॉक कर रहा है।
हाँ पर ये बहुत ब्रिलियंट बात है। और यहाँ पे आई थिंक फिर वो सोसाइटी की बात आती है मुझे अभी, जैसे कहते हैं ना कि वो एक एक मोमेंट फ्लैश हुई। इन सीन्स पे पब्लिक बहुत हंस रही थी थिएटर में।
अच्छा
तो और तुम्हारा पॉइंट बहुत सही है। अब क्या ये पॉइंट मैं तो नहीं कहूंगा मैंने कभी उठाया था इससे पहले। अभी मैंने डर अभी इस पॉडकास्ट के लिए देखी हाल ही में, तो तब मुझे भी ये चीज़ें क्रिंज लगी और तुमने इसको फ्लैग किया। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये एक वही है कि फिल्म एंटरटेनिंग है। कहीं कई बार हम ये एक्सक्यूज बनाते हैं कि वो जोक जब तक मेरे पे नहीं हो रहा तो फनी है। तो ये बहुत ही बहुत दिलचस्प बात है। अपनी अपनी थॉट कंप्लीट करो, बट हाँ
हाँ, पर
मुझे
मैं ये इस पे मैं ये कहना चाहूंगा साकिब भाई कि अगर ये कोई हल्की फिल्म होती या फिर मैं समझ जाता, जैसे कि बाजीगर में हमने बात करी है ना, अगेन बाजीगर इज मे बी नॉट टेकिंग इटसेल्फ दैट सीरियसली, तो वहां पे जब ये जॉनी लिवर के जो कॉमेडी सीन्स हैं आई कैन स्टिल डाइजेस्ट इट, कि आई गेट इट
और वो फैमिली
बाजीगर की
मेंबर नहीं
फिल्म
है,
है।
राइट? वो उसको भूलने की बीमारी है। हाँ तो वही तुम्हारी बहन को कोई
हाँ
छेड़ रहा है, तंग कर रहा है, तुम हिट विकेट हो
उसमें
गए जो
भी हाँ बिल्कुल, वो अगर बाजीगर में भी देखे ठीक है, वो अगर कोई बिल्कुल बारीकी से देखे तो कह सकता है, पर उस फिल्म को मैं थोड़ा पास दे दूंगा, पर इस फिल्म को जिसमें आप बहुत एक सच्चाई से मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, तो वहां पे मुझे ये लग रहा था कि बड़ा अटपटा सा लग रहा था, कि जब वो बात कर रहे हैं जब कोई हो रहा है तो वो कैरेक्टर थोड़ा सा अनोइंग था और क्रिंज था मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल क्रिंज था वो, कि वहां पर मजाक की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होनी चाहिए खास करके ऐसी पिक ऐसी मूवी में, ठीक
नहीं।
है।
सही कह रहे हो।
और
और
हाँ
इसमें बस ये कहूंगा जल्दी से, क्योंकि बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं, मैं भी इसमें थोड़ा जुड़ना चाहूंगा। वो ये है कि यही एक, अब हमें बहुत चीजें पता है सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी आई थिंक 10 बार बोल दिया ऑलरेडी, समाज के बारे में। और 1993 से लेके 2024 तक बहुत सा सफर हम लोग कर चुके हैं, अब तुम और मैं ही नहीं, सारे सब लोग। तो अब ये बात है कि भाई जब एक फिल्म बनती है, ऑफकोर्स वो चाहते हैं फिल्म सदियों चले और फिल्म हमेशा यश चोपड़ा साहब नहीं रहे, पर उनका काम पीछे रह गया और आज हम इसकी बात कर रहे हैं। तो फिल्म जब बनती है वो एक करंट ऑडियंस के लिए बनती है, पर कोई गारंटी नहीं है कि वो आने वाली जनरेशन को कैसे देखेंगी। क्योंकि जैसे अमिताभ की फिल्मों में, नमक हलाल वगैरह में जो गाने हैं, हम जहाँ पे अफ्रीका या कहीं ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं, वो क्लियरली उसको आप एक रेसिस्ट कॉनोटोन से देख सकते हैं आज। तब हमें ऐसा समाज पता नहीं था, तो वही एक चीज़ है कि कोई लड़की को छेड़ रहा है, वहां पे भी उसके भाई को जोक जरूर सुनाना है, लाला अमरनाथ। और जब वो एक डेथ की न्यूज आती है कि राहुल मारा गया, वहां पे क्या हिट विकेट हो गया, वो पहला उनका वो है कि आई मीन कम ऑन, 1 मिनट के लिए तो आप सीरियस हो जाओ। तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर मैं कुछ और शायद कहना चाह रहा हूँ, और मैं तुमसे कुछ डिसएग्री नहीं कर रहा, पर उस जमाने में फिल्म मेकर को वो एक कॉमेडी भी जरूर देनी थी। क्या आज अगर यश चोपड़ा होते और वो दोबारा देखते, शायद वो कई सीन ही हटा देते, या उनको आदित्य चोपड़ा कहते कि इन सीन्स की जरूरत नहीं है, इन्हें टोन डाउन किया जाए, या शाहरुख खान ही कहते, या अनुपम खेर खुद कहते, क्या यश जी थोड़ा सा, हु नोज। पर अभी हमारे लिए आसान है ये कहना, और मैं नहीं कह रहा कि तुम कहो ना, क्योंकि तुम्हारा पॉइंट बहुत दिलचस्प है और मैं
पर
इसको
मैं एक
गार्जियन।
और चीज कहूंगा उसपे,
हाँ
साकिब
बोलो।
भाई, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो फनी भी नहीं है मेरे हिसाब से। या तो आपने एक सीरियस फिल्म में आपने कुछ ऐसा एंगल डाला है, जैसे बाजी करके वो, अगर सीन्स में कहूं, है ना, वो मुझे फनी लगते हैं। पर यहां पे मैं दोनों तरफ से कहूंगा कि ना तो उनकी जरूरत है और ना ही वो फनी है। तो वो मेरे, मतलब मेरा दिक्कत ही उसकी ये है कि वो फनी भी नहीं है, वो अनुपम खेर का। अनुपम खेर का जैसे हमने पहले बात की, दिल है कि मानता नहीं कि कैरेक्टर, और उसके अलावा भी अनुपम खेर ने तो, मतलब अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं वो, पर यहां पर बिल्कुल मतलब आउट ऑफ सिंक है वो कहानी से। और वो तो मुझे वो दिक्कत है, मतलब वो दोनों तरफ से, मतलब वो दिक्कत है मुझे। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि वो
मेरा ये
कहानी
मानना
में,
है, हाँ नहीं, मेरा ये मानना है कि अगेन नॉट टू रिपीट माई सेल्फ कि मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। लम्हे में जब अनुपम खेर अनिल कपूर के दोस्त बने हैं और वहां पे उनका फेमस डायलॉग था कि गॉड का सेंस ऑफ ह्यूमर भी सिक हो गया है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो भी डायरेक्टर्स हैं, हमने पहले ही बात की, वो अपने कितने एक्टर्स को रिपीट करते हैं। तो अनुपम खेर उन फिल्मों में आए हैं यश चोपड़ा की, तो कहीं ना कहीं मुझे उसमें ये जो किरण के भाई का उन्होंने किरदार प्ले किया है इसमें, जूही चावला के, तो मुझे कहीं ना कहीं उसकी एक्सटेंशन लगती है ये, कि उस ह्यूमर की भी जरूरत नहीं थी। पर मैं ये तो कहूंगा कि दोगलापन होगा, किसी के पास रिसीट्स नहीं है, तब मैं कैसा था, मैं इन सीन्स पे तब हंसा था, पर हाँ आज मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये सीन आउट ऑफ लाइन है, थोड़ी ओवरकिल है। और ओवरकिल की एक बात की जाए, एक और सीन है जिसके बारे में बात करूंगा, अनुपम खेर का नहीं है, पर जूही चावला और सनी देओल जब स्विट्जरलैंड जाते हैं राहुल को धोखा दे के, क्योंकि राहुल के किरदार को लगता है वो गोवा गए और वो स्विट्जरलैंड गए, तो अगर आप किसी एक ऐसे इंसान से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, तो मुझे ये भी लगता है वहां जाके वो गाना गा रहे हैं, अपने हनीमून एंजॉय कर रहे हैं, कहीं उनको डर दिखा ही नहीं, जो फिल्म का नाम है। क्योंकि कोई ऐसी लड़की है जिसको परेशान कर दिया हो, जिसकी बाउंड्रीज वायलेट कर दी, होली पर रंग लगा दिया, उसके मंगेतर को गोली मार दी, तो अचानक स्विट्जरलैंड की 8-10 दिन की ट्रिप में आके आप इतने खुश हो गए, तो वो भी एक मुझे लगता है कहानी की कमजोरी है, कि वहां शाहरुख खान की परछाई होनी चाहिए थी, वहां ऐसे सीन होने चाहिए थे कि सनी और उनके बीच में तकरार हो रही है, भाई मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ तुम्हें खुश करने के लिए, कि हम जीना छोड़ दें, हमें एंजॉय करना
हाँ
चाहिए।
बिल्कुल,
और जूही का
ये
कैरेक्टर कहता है कि तुम मेरी जगह नहीं हो, वो मुझे फोन करता है, मुझे ख्वाबों में आता है, राइट, हर जगह मुझे नाइटमेयर्स आती हैं,
हाँ
तो वो एक बहुत ही फिल्मी फॉर्मूला है। और अगेन वो क्रिटिसिज्म ही है, जैसे जो तुम टेस्ट ऑफ टाइम कह रहे हो, वहां पे ये मेरा दोगलापन है कि मैं वाला पॉइंट उठा रहा हूँ, पर ये आई थिंक ये पॉइंट मैं सामने रखना चाहता था। अगर तुमने
अच्छा,
अनुपम खेर और कॉमेडी की और बात करनी है, वी कैन गो बैक देयर।
नहीं, ठीक है। अब मैं आपसे एक नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए मूव करते हैं, और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं बिल्कुल उस पर अपनी ओपिनियन दूंगा, पर आपको जो ये सनी देओल और जूही चावला की केमिस्ट्री थी, उसके बारे में आपको क्या कहना है? कि मुझे तो वो काफी वीक लगी, पर पहले मैं आपसे सुनना चाहता हूँ।
मुझे इतनी वीक नहीं लगी, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, और उस वक्त आई थिंक सारी तवज्जो राहुल पे थी, तो और सनी भी उस टाइम नरसिम्हा जैसी फिल्में कर चुके थे, अर्जुन मुझे बहुत पसंद था उनका एक्शन, तो ये एक स्टार कास्ट थी, जो एक ऑनसॉम्बल था कि दो बड़े हीरो आप लेके आए, एक उभरता सितारा और एक एस्टेब्लिश सितारा। तो पर हाँ मुझे थोड़े बहुत जो इशूज थे वो थे कि अभी मैंने डर को देख के मैंने गूगल किया, कि इंडिया में क्या कॉलेजेस की भी यूनिफॉर्म होती है, तो लिखा था कुछ कॉलेजेस में है, क्यों मुझे समझ नहीं आया जूही चावला स्कूल में है या कॉलेज में है कि वो यूनिफॉर्म में सब वापस ट्रेन से शिमला से बॉम्बे आ रहे हैं। तो बाकी हाँ, उनका रिलेशन जो तुमने कहा है, केमिस्ट्री पे तो मैंने ध्यान नहीं दिया इतना ना मुझे, और ध्यान नहीं दिया तो उसका मतलब इट डिड नॉट स्टैंड आउट कि ये ऑड है। हाँ, सनी थोड़ा शायद बड़े लगे हैं जूही से, और वो एज गैप तो आई थिंक हमारे बहुत हीरोज का रहा है, तो उस पर मैं इतना नेट पिक नहीं करूंगा। पर मैं सनी के बारे में और बात करना चाहूंगा, हीरो वर्सेस विलन के कॉन्सेप्ट की, क्योंकि वो उस जमाने की काफी दिलचस्प कॉन्वर्सेशन है, और जो विच आई थिंक ऑल्सो लेड टू सनी फॉलिंग आउट विद यश चोपड़ा एंड शाहरुख खान, दे डिडंट स्पीक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम।
हाँ, मैं पहले उस पे सनी और जूही की जो केमिस्ट्री थी, जो आपने पहले कहा कि, और मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जो सनी का कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही, आपने आप कह लीजिए कि वो जो प्लेन वनीला कैरेक्टर है, एकदम वन डायमेंशनल कैरेक्टर है। उसमें आपने कोई स्कोप छोड़ी नहीं है कि उनकी जो परेशानी है वो आप थोड़ी सी उजागर करें। वो आपको दिख रहा है कि हाँ उनको एक बंदा परेशान कर रहा है, पर वो एकदम सरफेस लेवल पे रहती है कि, और आपने बहुत अच्छे से वो बताया कि हाँ शायद जाके वहां पे वो परेशान होते जब वो एक छुट्टी भी मनाने गए हैं, तो वहां पे भी वो उसके बारे में सोच रहे हैं। और ये बिल्कुल मुझे लगता है कि एकदम नेचुरल लगता अगर ये दिखाया जाता कहानी में। और मेरा ये मानना है कि एक और उस ओरिजिनल पॉइंट पे मैं आऊंगा कि जो हम शाहरुख खान के साथ थोड़ी हमारी सिंपैथी हो रही थी, वो इस वजह से ही हो रही थी कि ये जो केमिस्ट्री थी वो मिसिंग थी, कि सनी देओल और जूही चावला के बीच अगर आप एक कपल दिखा रहे हैं फिल्म में, तो वो बिल्कुल मुझे कन्विंसिंग लगना चाहिए कि दे आर अ कपल। और वो जिस तरह से कह रही है कि भाई कि मैं सुनील के साथ ही रहूंगी एंड मुझे तुम पसंद हो, और वो भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तो वो चीज परफॉर्मेंस में नहीं दिखी। और शायद राइटिंग का ही दोष है वो, मेरे हिसाब से एक्टिंग से ज्यादा। वो मुझे बिल्कुल समझ में मेरे मुझे बिल्कुल भी पची नहीं वो बात। और बाकी जो आपने सनी की एज अ हीरो और विलेन वाली बात करी, आपने पहले कहा था वो जो शुरुआत का सीन है, और मैं आपको भी दूंगा मौका उस बात पर बोलने का, पर मुझे भी बड़ी अजीब अजीब लगी वो बात और वो सीन, कि एक आपने उसकी एक एंट्री दिखाई कि वो एक नेवी ऑफिसर है, वो हेलीकॉप्टर से उतरता है और तुरंत उसे एक मिशन दिया जा रहा है कि उसे एक बच्ची जो किडनैप हो गई उसे बचाना है। और हम आपने जब स्टोरी बताई थी तो वो स्टोरी है कि एक बंदा एक लड़की के लिए ऑब्सेस्ड हो गया है, और आप वो कहानी दिखाना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है ट्रेलर भी मैं देख रहा था कि ट्रेलर में गया था, और वो ट्रेलर में भी वही दिखता है, पर लेकिन ट्रेलर की शुरुआत में वो एकदम ब्लैक कमांडो बन के सनी निकल के आते हैं, तो वहां पे मुझे बड़ी इनकंसिस्टेंसी लगती है कि आप 10 मिनट शुरू के आपने वो किडनैपिंग वगैरह में निकाल दिए। और प्रॉबेबली वो जो हम मेरे ख्याल से वो सिंड्रोम है हमारे यहाँ जो एक्टर्स को, कि भाई कि मैं हूं तो मैं शायद एक एक्शन सीन होना चाहिए, मेरा हीरोइन के साथ गाना होना चाहिए वो। और इसीलिए मतलब मैं बार बार फिर वो कह रहा हूं कि इसीलिए फिल्म थोड़ी सी आपकी जो ओवरऑल आपका जो प्रोडक्ट है वो वीक होता जाते हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो आप सनी देओल के बारे में कह रहे थे कि ये हीरो या विलेन का जो हमारा एक कश्मकश रहती है हमारे यहाँ, कि हमें भैया हीरो हीरो के ही रोल करने, कि मैंने ये भी सुना था कि आमिर खान ने भी फिल्म इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वो नेगेटिव किरदार उस समय नहीं प्ले करना चाहते थे, कि भाई ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, या जो भी उनके रीजन थे। तो आपको क्या लगता है कि सनी देओल ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया इस फिल्म में, या फिर उनके जो इनपुट्स रहे होंगे वो ये थे कि भाई कि मैं फिल्म का हीरो हूँ और मुझे ही मतलब आई शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन।
हाँ, आई थिंक ये तो बहुत, ये बात तो काफ़ी बार जाहिर हो चुकी है। कई ऐसे लोग हैं जो लग बाय चांस में भी ऋषि कपूर और संजय कपूर के डायलॉग था, आई थिंक उन्होंने इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसे लोगों का नज़रिया कवर किया है, कि जो उसमें भी कहते हैं कि स्पिन ऑफ कर देंगे, उसको ये हो जाएगा, किसी की याददाश्त वापस आ जाएगी। तो हम लोग ये एक बहुत ही असमंजस में है जो हमने एक बनाया हुआ है, जो फिल्में देखते हैं और जो फिल्में बनाते हैं, हम सब ने ये किया हुआ नहीं। पब्लिक को ऐसी चीज़ पसंद है, तो ये पब्लिक की डेफिनेशन किसने बनाई है इसका कोई आंसर नहीं है। हाँ, मैट्रिक्स हैं कि भी फिल्में चलती हैं और डर ने पैसा बनाया, और आज भी जो गंद कूड़ा बन रहा है वो पैसा बहुत बना रहा है, पर वो एक अलग दिन का मुद्दा है। तो सनी भी मैं कहूँगा, जैसे सनी ने हाल ही में एनिमल में कहा था, मैंने कहीं पढ़ा कि जब बॉबी डोल का एंड में उनको मार दिया जाता है, सनी उस सीन से पहले सिनेमा से बाहर चले गए। अब ये एक्टर हैं और ठीक है, उनका भाई है और वो बेरहमी से उन्हें माना जा रहा है, तो मुझे यहाँ इनका थोड़ा नजरिया भी लगता है कि ये बहुत ही ओल्ड स्कूल और बहुत एक वन डायमेंशनल, और मैं इनको नेगेटिव, मैं ये नेगेटिव एक्ोलेट्स नहीं दे रहा, पर मुझे लग रहा है कि समटाइम्स यू डेंट गेट द मेमो, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है यू डेंट मूव ऑन विद द टाइम्स। तो फॉर एन एक्टर आई थिंक इन्होंने कई बार वो अपनी कॉमेंट्री में दिया है कि इनकी सोच शायद धर्मेंद्र के जमाने की ही है, राइट? यू नो, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र शायद ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं सनी से, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आई थिंक कई बार लोग ज्यादा कंजर्वेटिव रह जाते हैं, उनकी सोच ज्यादा रह जाती है, तो ये पर हाँ, ये ओवरऑल मानना कि हीरो विलन का, आई थिंक तुमने कहा है, वो जो शुरू में सीन डाला गया है कमांडो वाला, क्या पता वो सीन सनी को कन्विंस कराने के लिए डाला गया हो, क्योंकि सनी ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि भाई मैं एक नेवी ऑफिसर हूँ, ये एक लड़का जो हमें पता नहीं इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये मुझे छुरा कैसे मार सकता है। तो फिर आई थिंक उन्होंने आपकी अदालत या कहीं इंटरव्यू में कहा था, तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने यशी से बात की, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, उन्होंने अपनी जीन्स फाड़ दी थी जेब में हाथ डाल के। अब पता नहीं जीन्स कोई कैसे फाड़ सकता है, सनी ही फाड़ सकता है, बट शायद हुआ हो ये भी। तो आई मीन धर्मेंद्र ने तो
पर मैं
किसी
एक
का
बात ये कहूंगा कि वो बड़ा वैलिड पॉइंट था, जो वो मैं उस बात से कन्विंस था कि जब जो सनी देओल जो आर्गुमेंट दे रहे थे कि वो बंदा मुझे छुरा नहीं मार सकता, और मुझे बिल्कुल,
बेशक
मैं उस
बेशक
बात से
बिल्कुल इस
सहमत
बात
था
में।
कि वो
हाँ
अगर
हाँ
नेवी ऑफिसर है, और वो बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट था कि कोई भी, बिकॉज ही इज सो वेल ट्रेन, राइट? और आप खास करके ऐसी फिल्म में जहां आपने उसको शुरू में दिखाया कि वो दिलीप टाइल कहता है कि भाई तुम्हारे अलावा कोई ये मिशन कर नहीं सकता है, फिर उसको अगर कोई एक ऐसा बंदा कि
ये
जो
पता
कि
नहीं आर्मी और एयरफोर्स में ऐसी बातें होती होंगी, भाई बाकी सब भी ट्रेंड ऑफिसर हैं, भाई तू आ जा, तुमसे बेहतर कोई नहीं।
हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, पर अगर आपने वैसा एक इमेज बना दी एक बंदे की, और फिर उसको आप कह रहे हो कि भाई उसे राहुल जैसा, जो कि दिन भर कुछ नहीं कर रहा है, बस एक अपनी इमेजिनरी मॉम से बात कर रहे हैं फोन पे, वो आके उन्हें चाकू मार देता है, तो वो मुझे लगा कि आई थिंक वैलिड पॉइंट था, और यश चोपड़ा ने शायद उनकी बात मानी भी फिर, कि जब वो उन्होंने कहा था कि वो मुझे जब देख नहीं रहा तब वो मुझे चाकू मार दे।
तो मैं इस बात को ख़त्म करके
हाँ
ना एक किस्सा सुनाता हूँ, जो आई थिंक एक वो मानसिक एक आई थिंक जो नज़रिया था उस ज़माने में, और शायद कई लोगों का आज भी हो, हीरो विलन की डेफिनेशन का। तो हमारे घर में, मेरी मासी के घर में एक आंटी आती थी, उनकी फ्रेंड थी, वो अमृतसर से आती थी। तो बचपन से हम लोग अपने कजन्स के साथ बहुत रहे हैं, तो मैं और मेरी सिस्टर उन आंटी से बहुत क्लोज थे, और जो जो हम बड़े हो गए, और उन आंटी, वो आई थिंक वो पहला ऐसा शख्स था, देखो कैसी कैसी बातें याद आती हैं, वो पहला ऐसा शख्स था जिन्होंने मुझे और मेरी सिस्टर को एक एक बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन की इनकरेजमेंट दी। हमारे घर में हमें छूट तो बहुत थी, पर हम उन आंटी से ऐसे डिबेट करते जैसे हमारी हम उम्र है, तो मुझे डांट भी पड़ी थी। तो ये खलनायक जब रिलीज हुई थी, तो हम लोग गर्मियों, आई थिंक तब गर्मियां ही थी, तो हम लोग रात वहीं रुके थे, तो अपनी मासी के यहाँ, तो आंटी से हम लोग रात को बात कर रहे थे, तब तो मैं 12th में ही था। तो उन्होंने कहा कि भाई इस फिल्म का हीरो जैकी श्रॉफ है, तो मैंने कहा नहीं, फिल्म का हीरो संजय दत्त, हमें प्रोटैगनिस्ट एंटैगनिस्ट ये चीज़ें नहीं पता थी। तो वो कह रही नहीं, जैकी श्रॉफ है, गंगा उसको मिलती है एंड में, जो माधुरी का कैरेक्टर है। मैंने कहा बट कहानी तो संजय दत्त की है। मैं कहा चलें कल आपको मैं शीला सिनेमा लेके जाता हूँ, और जो बाहर 300 लोग सिनेमा के बाहर खड़े हैं उनसे सबसे पूछेंगे कि आप फिल्म संजय दत्त की से देखने आए हैं जैकी श्रॉफ की, कहती ये कोई बात हुई? तो मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो गया, तो फिर मुझे मेरी मासी ने डांटा कि तमीज से बात करो, पर उन आंटी का नहीं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो वो बात मुझे आज भी लगती है कि एक एक सोसाइटल नॉर्म था कि चाहे दिलीप कुमार अंदाज में हल्का सा नेगेटिव रोल थे, पर वो राज कपूर के साथ थे, दो दिग्गज कलाकार थे, तो वो किसी ने ये नहीं कहा होगा कि दिलीप कुमार विलन थे, पर उसमें वो इतने फ्लैट आउट विलन भी नहीं थे। अगर लोगों ने अंदाज नहीं देखी तो मैं कहूंगा देखनी चाहिए, दिलीप कुमार नरगिस राज कपूर का प्लग इन कर रहा हूँ, बट आई थिंक ये डर, बाजीगर, खलनायक और अंजाम के दौर में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी फैंस के बीच में कि इस फिल्म का हीरो कौन है। और जैसे मेरी आंटी थी वैसे सनी देओल थे, सनी देओल डिडंट गेट द मेमो, चाहे वो हीरो थे, वो गाने गा रहे थे, फिल्म थी राहुल की कहानी, एक ऐसा किरदार यश चोपड़ा ने लिखा था हिंदी फिल्म जगत के लिए और ऑडियंस के लिए। तो वो आई थिंक कई कहीं ना कहीं उससे लोग खफा हुए, और सनी भी खफा हो गए। जैसे दामिनी में भी ऋषि कपूर ने कहा है अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में, मेरी वाइफ ने बताया है कि दामिनी में उनके सीन कुछ कम थे, सनी जबकि एंड में आया और सनी को क्रेडिट मिल जाता है, फिल्म एक वो वुमेन सेंट्रिक फिल्म थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये ईगोज हैं, मेल ईगोज, हम तो एक फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, और ये सनी और शाहरुख और यश चोपड़ा की जो इक्वेशन है, सनी ने कभी दोबारा काम नहीं किया यशराज में, तो इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि वहाँ क्या हुआ था। सनी को आई थिंक 2.5 घंटे की फिल्म करने के बाद भी समझ क्यों नहीं आया कि कहानी राहुल की है, तो उनका वही ट्रेडिशन था कि भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बचा रहा हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तुमने कहा आई एम अ गुड बॉय ऑफ सोसाइटी, तो हीरो तो मैं ही हूँ, ये कैसे हीरो होता है जो क क क किरण कर रहा है, बट
हाँ
ऑडियंस के
नहीं,
लिए
वो
नजर
हीरो नहीं
इतना
है,
था
पर आई थिंक हाँ हमें बेबी अपनी शब्दावली में वो कहना चाहिए कि वो
नहीं,
हाँ
हमें तो पता है वो हीरो नहीं है, बट
हाँ
ये भी एक कॉन्वर्सेशन है ना कि भाई संजय दत्त खलनायक है, तुम्हें क्या लगता है हीरो कौन है, खलनायक संजय दत्त या जैकी श्रॉफ?
मैं वही कह रहा हूँ कि साकिब भाई शायद हमारी शब्दावली गलत है कि उसे हीरो कहना ही नहीं चाहिए, कि हम ये जो हम आम बोलचाल में कहते हैं कि इस फिल्म का हीरो कौन है ना।
बिल्कुल, हीरो गलत है
मेरे
वर्ड,
ख्याल
हाँ
से वो जो आपने कहा कि वो प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट जो हम कहते हैं वो शब्द में भी सही है, क्योंकि डर में मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि वो कहानी ही पूरी जो है वो शाहरुख खान के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है, तो मुझे तो कोई शक नहीं है उसमें कि वो शाहरुख खान का ही नजरिया है उस पूरे फिल्म का। और ये काफी बचकानी सी बात लगती है कि मुझे लगता है कि जब आप अपने किसी बच्चे को कहानी सुना रहे हैं तब आप उसको कहते हैं कि ये आ, आ, ये सही है, ये गलत है, ये गुड है, ये बैड है ना ऐसे। पर आप एक फिल्म बना रहे हैं, मुझे लगता है जब स्क्रिप्ट पढ़ी है तो अगर सनी देओल ने वो स्क्रिप्ट पढ़ के उन्हें ये लग रहा है कि वो हीरो है और उनको एंड में हीरोइन मिल जाती है, वो बचा लेते हैं और वो विलेन को मार देते हैं जो कि शाहरुख खान है, तो वो तो बहुत ही मेरे ख्याल से एक पुरानी सोच है। जैसे आपने कहा कि
एग्जैक्टली
50-60 के दशक में जो फिल्में बन रही थी वहां वहां पे शायद ऐसी बातें होती होंगी, पर जिस तरह की वो फिल्म है, जिस तरह की वो कहानी दिखाई जा रही है, तो उस पे मुझे इसीलिए एक और चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वहां पे कास्टिंग का बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि सनी देओल जिस तरह की फिल्में आप देखेंगे, हमने पहले भी उस जो हमने अपना एपिसोड किया है घातक, घायल, और खास करके वो आज भी जो फिल्म कर रहे हैं जो उन्होंने गदर टू की है, वो हमेशा से मे भी उनको ये लगता है कि भाई कि एज अ हीरो और वो बिल्कुल जो सेवियर हैं और वो बिल्कुल एक्शन हीरो कि वो सबको 10 गुंडों को मार के, उनकी अभी भी मतलब शायद वो वैसी फिल्म करने में कंफर्टेबल भी हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी फिल्म में भी फिर किरदार भी आपको अगर कास्ट आप ऐसे ले, जैसे कि अगर हम बाजीगर से कंपेयर करें राइट, अब वहां पे भी आप देखिए कि वो जो दूसरा एक्टर है सिद्धार्थ, अब वो ये भी है कि आई थिंक एक एक्टर की पर्सनैलिटी और उसकी मतलब सिद्धार्थ वॉज नॉट एज बिग अ पर्सनैलिटी एज सनी देओल, नो वेयर नियर राइट, तो वहां पे तो बिल्कुल आपको कोई शक नहीं होता है कि भाई कि संजय कि शाहरुख खान ही है उस फिल्म में जो भी है और सब कुछ है। आई थिंक सिद्धार्थ को एक गाना वो बस दिया है कि छुपाना भी नहीं आता और
क्यों दिया वो
ये
गाना, हाँ पर ठीक
और अगर आप फिर ऐसे और खलनायक की भी अगर बात करें तो बिल्कुल कहानी वो संजय दत्त की कहानी है, उसमें जैकी श्रॉफ मेरे हिसाब से सपोर्टिंग रोल ही है, लाइक ही इज नॉट द मेन लीड इन दैट फिल्म, इवन दो ही इज प्लेइंग अ पॉजिटिव कैरेक्टर बट या ही इज प्लेइंग अ सपोर्टिंग रोल। तो ये बड़ी
और
हाँ मे बी टाइम के साथ लोग इवॉल्व हुए होंगे अब तो इंडस्ट्री में,
नहीं बिल्कुल
पर
यार, और ये नहीं कि उस वक्त मुझे बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी, पर मुझे इतना पता था कि भाई टाइटल पे पोस्टर पे संजय दत्त हैं, राइट, बल्लू
हाँ
बलराम संजय दत्त हैं, जैसे अब
हाँ
दीवार है, राइट, दीवार में भी जैसे हमने पहले बात की है कि मेरे पास माँ है, कई लोग अब तुम कहोगे कि फिर हम वहां पहुंच गए और किसी ने ऐसा कहा नहीं, मैंने लोगों से सुना है दिल्ली में, लोगों ने वो शशि कपूर ने अमिताभ को चुप करा दिया, मैंने कहा क्या चुप करा है, वो लाइन मेरे पास माँ है और माँ उसी के पास है, बट अमिताभ डोमिनेट्स एवरी सीन दीवार में, शशि इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, पर अब लोग कह रहे हैं कि भाई वो कोई रियल लाइफ बात थोड़ी, वो चुप हो गया, हाँ उसके पास माँ नहीं है, तो लोगों का नजरिया भी बहुत एक 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 बहुत दिलचस्प नजरिया है लोगों का, कैसे हम सेम चीज को
वो बड़ी
डिफरेंटली
इंटरेस्टिंग
देखते हैं,
बात है वो वैसे
हाँ
कि जो आपने कही, पर आई थिंक अगर आप उसको देखें वैसे जो उसकी गहराई में जो भी जाना चाहेगा उस सीन में, तो वो सीन ही वही है कि वो बेसिकली अगेन अमिताभ को ही चुभ रहा है वो चीज कि माँ उसके पास है, और वो फिर उसका ही दृष्टिकोण है वो कि भाई
और
कि
बाद में
आप
माँ भी तो
अमिताभ के
कहती
लिए
है,
फील
हाँ बाद
करें,
में माँ भी
हाँ
कहती है मैंने
आप
हमेशा
अमिताभ
विजय को
के लिए
ज्यादा
फील
प्यार
करें,
किया,
कि वो जो सीन है वो उसका, इवन दो शशि कपूर उसे जो भी जो कह रहा है कि भाई चुप करा दिया है, पर आपकी फिर आप सोचने अमिताभ के बारे में लगते हैं कि सही में इसने सब कुछ करने के बाद भी इसको हासिल किया, वो माँ तो चली गई, तो आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो
नहीं जैसे
अगर आप
हम एक पिछली
हाँ
पॉडकास्ट में आते, तुमने कहा था नसीर और आमिर का कौन किसको खा गया, और ये बहुत चला है, राइट, ये शायद आज भी
हाँ
चलता हो, पर मैं लोगों को इतना जानता नहीं, हम वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, बट ये एक ऐसा वाहिद सीन है जिसको शशि कपूर को लोग कहते हैं उसने अमिताभ को चुप करा दिया, पता नहीं, या तो लोगों को फिल्म समझ नहीं आती वो क्या हो रहा है वहां पे, अमिताभ को किसी ने नहीं खाया उस फिल्म में, और अमिताभ को कोई खा भी नहीं सकता था, अगर वहां यूसुफ साहब भी खड़े होते तो अमिताभ ने ऐसी लाइन्स डिलीवर की हैं और उनकी एग्जीक्यूशन और दीवार में जो हमने कितनी बार बात की है, हाँ शशि कपूर कमजोर नहीं है, पर कई बार मुझे लगता है लोग कहानी समझ कैसे रहे हैं, ये तुमने बहुत अच्छी तरह से कहा कि भाई दीवार में अमिताभ को ही वो दर्द है। बहरहाल इस बारे में शायद दोबारा किसी और पॉडकास्ट पे आएंगे, पर मैं एक शाहरुख खान के बारे में ये भी कहना चाहता हूँ, डर का किरदार था। अगर हम खलनायक वाली बात पे जाएं, खलनायक में जो बल्लू बलराम है वो एक क्लासिक टेररिस्ट टेम्पलेट है कि वो लड़का बहक गया और फिर उसको एक वैसी एक लीडर ने, एक फोर्स ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया, तो वो एक ऑल एंड आउट विलन नहीं है। हाँ, वो टेररिस्ट है और सब उसकी कहानी बताई जा रही है, गुमराह हो गया, सुबह का भूला, शाम को घर आ गया, तो फिर पर डर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और शायद हम ये कह चुके हैं पिछले 50 मिनट में। तो आई थिंक डर का जो एक राहुल का जो पहले तुमने सीन भी बोला था, वो सनी के पहले सीन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो सीन इतना एफिशिएंट है, पहले वो दिखाते हैं वो चल रहे हैं टेरेस पे, शी लव्स मी नॉट, और फिर आई लव यू किरण, और वो सीन आपको छोड़ देता है भाई क्या होने वाला है। अब जो सनी का सीन है, मैं तुमसे पूछता हूँ, अरे फिल्म नितिश भारद्वाज ने की होती तो क्या वो नेवी में होते, और होते तो वो बच्चों को बचाने जाते, क्योंकि आई थिंक आंसर यही कहीं है कहीं। हाँ, क्या पता फिल्म जोड़ी गई हो सनी को फिल्म में रखने के लिए, क्योंकि अगर सनी ना खुश हो तो उनको सीन दिए गए हो कि भाई तुम्हें अपनी मसल दिखानी है, तुम्हें अर्जुन मालवंकर को दोबारा जिंदा करना है जो अर्जुन का किरदार है या नरसिम्हा का, तो उन्हें ही मैन तो दिखाना था उन्हें।
वो बिल्कुल, आई थिंक वो बहुत फोर्स लगता है जो शुरू के सीन्स हैं, और इवन उनके जो गाने हैं, या तो आप कह लीजिए कि ऑब्वियसली वो एज अ कंपोजर भी, कंपोजर ने जो गाने कंपोज किए वो अच्छे नहीं है, जो उनके दोनों उनके गाने हैं कि दरवाजा बंद कर लो और वो लिखा है खत, तो मुझे वहां पे
अब
बिल्कुल
तो तुम गानों के भी पीछे पड़ गए यार,
मतलब
गाने तो बंदा वैसे अच्छे नहीं गाता, उसने गाए हैं। और वो सीन भी कितना बेकार है उस गाने में, जब वो स्विट्जरलैंड में पूल साइड खड़े हैं और वो वहां छोटी सी कुछ लड़कियां खड़ी हैं, पता नहीं उनकी उम्र क्या
हाँ
है, क्या
देखिए, अगेन
सीन
मैं
है
वही कह रहा हूँ कि
यार।
वो सीन की बिल्कुल ऐसी फिल्म में जरूरत नहीं है, वो आपकी फिल्म बिल्कुल हल्की कर रही है आपकी फिल्म, तो ये सब चीजें हैं जो बिल्कुल डाइल्यूट कर देती हैं आपकी जो कहानी आप कहना चाह रहे हैं ना, कि मतलब इवन दो इट्स वेरी टाइट फ्रॉम शाहरुख खान पर्सपेक्टिव, पर हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब मैं कहूंगा कि 35-40 मिनट आप बिल्कुल काट सकते हैं फिल्म के।
तुम्हारे फेवरेट शाहरुख खान सीन कौन से हैं इसमें, स्पॉन्टेनियसली पूछूंगा, क्योंकि मेरे नज़र में एक दो सीन हैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो सीन कोई है जो तुम्हें लगता है जो आज भी तुम देख सकते हो और तुम्हें लगता है यार मजा आया देख के?
मुझे वो जो लास्ट में वो एक चिल्लाता है, अगर आप देखेंगे जब वो म्यूजिक बजा रहा है सनी देओल, तो वो सीन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो शाहरुख खान परेशान हो गया है ना, कि उसे कोई
जब वो,
परेशान कर
हाँ,
रहा
जब
है,
वो माउथ ऑर्गन जो भाग रहा है
हाँ
और फिर वो
वो
कहता है
बज रहा
यही
है और
तू
वो
बज
कहता है
यही धुन बजाता था ना तू।
हाँ ये धुन तू बजाता था ना, और वहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़ी मेरे हिसाब से खराब एक्टिंग की है सनी देओल ने, पर ठीक है। पर हाँ वो शाहरुख खान की एक्टिंग बहुत अच्छी है जब वो चिल्ला रहा है वहां पे, और उसके
तुम डिस्क्लेमर डाल
अलावा
देना ट्विटर पे कि सनी फैंस ना सुने पॉडकास्ट, क्योंकि काफी
हाँ
हो गया
नहीं, पर हमने
सनी
सनी पे एक सनी के लिए हमने
के।
एक डेडिकेटेड एपिसोड किया है, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई सनी के को नीचा दिखाने के लिए, पर आई थिंक उस सीन की बस एक बात कर रहे हैं। एक और सीन है जहां पे वो अनुपम खेर और तन्वी आजमी के साथ बैठे हैं और वो बात कर रहे हैं, और जब वो कोशिश कर रहे हैं जानने की कि वो दोनों कहाँ गए हैं, है ना, और वो सीन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और खास करके उसको जिस तरह से मैंने उसमें लास्ट में तन्वी आजमी जब वो शाहरुख खान जा रहे थे तो वो कहते हैं कि शी ही इज अ नाइस बॉय, है ना, तो वहां पे अनुपम खेर तो फिर से जोक करने लगते हैं, पर वो मुझे एक नाइस टच लगा राइटिंग में कि ही इज अ वेल मैनर्ड गाय इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, है ना। और शाहरुख खान के ऐसे सीन्स की मतलब मैं दो तीन और बताता हूँ फिर आप कहिएगा। एक तो वो भी सीन में मैं उनको बड़ा नोटिस कर रहा था जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं, जब सनी देओल हॉस्पिटल में है और वो एक मैगजीन के पन्ने पलट रहे हैं, और फिर वो अचानक से उनकी हाइट पूछता है, कहता है तो फिर 5 फुट 10 इंच वो कहते हैं हाइट, तो मुझे यहाँ इन सब जगहों पर शाहरुख खान की एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी। और अगर मुझे कुछ अभी याद आते हैं अचानक से तो फिर मैं बताता हूँ।
आई थिंक दो सीन जो मैं बोलूंगा तुम्हें भी पसंद है, क्योंकि हमने बात की थी कुछ दिन पहले। तो मुझे जो सीन बहुत ही पसंद वो है कि जब वो स्विट्जरलैंड में मिलते हैं और एक बार या रेस्टोरेंट से निकल रहे होते हैं और वहां पता नहीं कौन लोग थे वो इंडियन जो उनको छेड़ते हैं, यानी ऐसे लोग कैसे फिल्मों में आ जाते हैं। मैं इतने साल से रह रहा हूँ, मैंने नहीं देखा ऐसे किसी, अरे बेबी वो देखो हमें भी ले लो, जो भी वो उल्टी सी बातें कहते हैं। तो फिर वो दोनों जब उनको मारते हैं, और आई थिंक ये इसमें दोनों डायरेक्शन क्योंकि आई थिंक अब यश चोपड़ा जो कर रहे हैं, कहानी बढ़ रही है, वो वहां स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, तो स्विट्जरलैंड का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है. तो वो वहां डायरेक्शन भी अच्छी है कि कैसे एक के बाद एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट आ रहा है. और फिर जब शाहरुख खान सनी की गर्लफ्रेंड को उन्होंने कहा, शाहरुख खान का जो अंदर से जो तेज, जो जुनून भरा हुआ है, जो बाहर आता है, वो सीन बहुत अच्छा. सनी उनको खींचते हैं, वो
हाँ,
बहुत ही टाइट सीन है कि भाई वो तो उसको जान से शायद मार देते, तो सनी को वहां अपना संतुलन संभालना पड़ता है. तो वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है. और एक वो सीन है जो तुमने पहले जिक्र किया है कि जब सनी को पता चलता है फोन पे वो कोक और स्प्राइट लेके आ रहे होते हैं, और अचानक फिर दिल्ली से मतलब बॉम्बे से फोन आता है अनुपम खेर का, कहते हैं और राहुल वहां भी पहुंच गया. फिर उनको
बियर
लगता है
लेके
कि
आते हैं। हाँ, वो
हाँ, फिर
कहते हैं
वो
बियर पीऊंगा।
स्कॉच लेके आते हैं, विस्की स्कॉच लेके
नहीं,
आते
वो
हैं.
कहता है कि जब वो अंदर
हाँ
जाता है तो वो कहता है कि बियर, और फिर वो
हाँ
जब उसको पता चलता है कि ये कल्प्रिट है तो फिर वो विस्की लेके आते हैं चेंज करके।
बिल्कुल, नहीं सही बात है, कोक वहां पड़ी हुई थी, तो मैं क्योंकि मैं खुद टी टोटलर हूं तो मैं कोक ही पीता, तो हाँ यू आर राइट. तो जब वो बाहर आके उन दोनों के बीच में जो सीन है, जूही चावला कहते हैं वो औरतों को सोने का इरादा है, तो वो दोनों बैठ के बातें करते हैं, तो वहां मुझे इस बार लगा, देखो यही है कि हम एक फिल्म को कितनी बार देखते हैं, तो अगेन मेरे रेफरेंस पॉइंट स्टोरीज में होते हैं, सॉरी मैं बोर करता हूँ तुम्हें. तो पुराने दिल्ली में दिलीप कुमार की परछाई बहुत ह्यूज थी जब मैं बड़ा हो रहा था. मैं बच्चन फैन था और ये सनी वगैरह आ चुके थे, और मैंने दिलीप देखा था ओल्ड फिल्मों में, मुझे पता था ये अच्छे महान कलाकार है, पर उस वक्त यंग एज में आपको दादा ठाकुर या यू नो दिलीप के ओल्ड किरदार की इतनी ओके ही इज अ ग्रेट एक्टर, पर आपने उनको हीरो नहीं देखा. और फिर मैंने लीडर और अमर जैसी फिल्में देखी थी, तब मुझे इतना समझ नहीं आया उनकी एक्टिंग का. तो ये हमेशा मैंने सुना था कि दिलीप कुमार से बहुत इंस्पायर्ड है शाहरुख खान, और कई जगह कंपेरिजन बहुत होते थे. मे बी सम मुस्लिम वर्ल्ड थिंक कि भाई एक वो आ गया तो लोग खान को खान से जोड़ रहे हैं, पर मुझे वो चीज़ कभी दिखी नहीं. तब वो मुझे चीज़ अब दिखी है जब मैंने 3 दिन पहले डर देखी है, जब वो स्विट्जरलैंड में शाहरुख खान कहते हैं दूर तलक चली जाती है, राइट, और सुनील जो हंस रहे हैं, जो हंसना तो उनका अपना है, पर कहीं ना कहीं मुझे वहां पे दिलीप की छवि दिखी है कि ये सबकॉन्शियसली उस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं, जो कि ट्रिब्यूट है दिलीप के लिए भी और शाहरुख के लिए भी. तो वो सीन मुझे बहुत पसंद है, और उस सीन की लिखाई भी बेखूबी. वहाँ सनी देओल भी अपने मुंह पे गुस्सा करके उंगली रख के बैठे हुए हैं अपने, और कहते हैं बड़ा गुस्सा आता था, सोचता था उसको मार दूं. तो वो सीन में आई थिंक मैं कहूंगा सनी की भी एक्टिंग अच्छी है, वो सीन ही बहुत वेल एग्जीक्यूटेड है, और शाहरुख की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है. तो मुझे दो सीन बहुत पसंद है, और बाकी एक जो मुझे वो सीन पसंद है वो जो चेज है जिसमें भागते हैं, उसमें इनकी फिजिकैलिटी दिखाई है. हाँ ये कहेंगे अभी एक नेवी ऑफिसर ने उसको क्यों नहीं पकड़ा, तो हमें नहीं पता शाहरुख स्पोर्ट्स खेलते थे स्कूल में कि नहीं. फिर वो खंबे से टकराते हैं, फिर वो चेज कंटिन्यू होती है, फिर साइकिलें आ जाती हैं. तो वो एक मुझे बहुत सीन पसंद है. और वहां पे इन दोनों के जो फेशियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि भागने में भी एक एक्टिंग है, दोनों इंटेंसिटी बरकरार कर रहे हैं, एक बंदा बचना चाह रहा है, एक बंदा उसको पकड़ना चाह रहा है. पर मैं एक चीज करता उस सीन में, जब सनी देओल एम्बेसडर कार से टकरा जाते हैं और गिरते हैं, तो तब मैं दिखाता कि जब वो गिर गए हैं, शाहरुख दूर जाके रुक के उन्हें देखता और फिर चले जाता, फिर वो सीन वहीं खत्म हो गया. पर स्टिल अ प्रेटी गुड सीन. तो तुम्हें ये सीन कैसे लगते हैं, अगर इन सीन से कोई और सीन याद आया तो बात करते.
चेज तो हमने मैंने भी पहले कहा कि हाँ, वो वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स है, जो चेज सीक्वेंस है। एक और सीन जो मुझे याद है, जब वो, जो मैंने पहले भी कहा था कि जो लास्ट के आधे घंटे वो बहुत अच्छे हैं, उसमें जब वो बैठ के बाहर डिनर कर रहे हैं ना साथ में, और तो वो मुझे बड़ा एक अच्छा इक्वेशन लगा कि वहां पे जब जूही कहती है कि इसको एक लड़की बहुत पसंद थी पर इसने कभी बताया नहीं, और फिर वो मतलब अपने कह लीजिए पत्ते खोल नहीं रहा है, और मेरे हिसाब से वहां पे शायद एज एन ऑडियंस मेरे को लग रहा था कि शायद वहां पे हिंट हो जाना चाहिए एज अ कपल आपको, कि अगर आपने इतना कनेक्ट कर लिया कि इसको एक लड़की पसंद थी जो बहुत इस ये लाइक ही वॉज इन लव विथ समबडी, तो वहां पे थोड़ा सा तो क्लिक होना चाहिए था, बट इट्स ओके। मतलब जो जहां पे उनको क्लिक करता है अनुपम खेर का, दैट्स ऑल्सो ओके फॉर मी, पर दैट वॉज ऑल्सो रियली नाइसली डन सीन मेरे हिसाब से। इवन एक सीन मुझे अभी याद आ रहा है कि जहां पे फाइनली जब वो पुलिस ऑफिसर बताने आता है कि अनु कपूर मर गया है, तो जो वो एक उनको रोक के पूछता है कि मैंने आपको कहीं देखा है, तो फिर वो कहते हैं कि हॉस्पिटल में मैं था, और फिर वो एक कनिंग सी स्माइल, वो जब उसको नंबर पता चल जाता है, एक तो पहली बात है कि वो सीन में वो नंबर जोर से बताती है स्विट्जरलैंड का, लेकिन वो जो एक स्माइल सी पास करते हैं और उनको लगता है कि नाउ आई हैव गॉट देम, है ना, वो सीन भी मुझे पसंद है। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे कि अंजाम की हमने पहले बात करी थी, मुझे अंजाम का जो कैरेक्टर है उसमें मुझे थोड़े से ज्यादा क्या कह लीजिए लेयरिंग लगती है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा वो जो कैरेक्टर है ना, वो मतलब ओपनली फ्लर्ट भी कर रहा है माधुरी के साथ, वो उसको वू कर रहा है, और जो वो गाना है बड़ी मुश्किल है ना, तो और फिर वो धीरे धीरे जब उसको रिजेक्ट कर रही है, तो वहां पे वो फिर वो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो रहा है, और फिर वहां पे कहानी तो बिल्कुल अलग है वहां पे, क्योंकि वहां पे वो रिवेंज भी ले रही है उससे, यहाँ पे कोई जूही इज नॉट आफ्टर शाहरुख इन डर, पर वहां पे तो वो प्रॉपर एक रिवेंज है, बट वहां पे मुझे लगा है कि कुछ कुछ अगर जो सीन्स है वहां पे शाहरुख खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, कि इवन तो वहां पे वो ज्यादा वायलेंट हो जाता है, और वहां पे तो वो माधुरी को भी मारने लगता है, और फिर वो मर्डर वर्डर तो करता ही है, उसके पति को भी मार रहा है जो कि डर में भी कर रहा है, लेकिन वहां पे ही लाइक मोर वायलेंट बट ऑल्सो मैनिपुलेटिव, जो कि यहाँ पे वो बिल्कुल बैकग्राउंड में आउटविट करने की कोशिश कर रहा है, बट ओवरऑल मैं मानता हूँ कि हाँ जो कैरेक्टर है राहुल का वो बेटर है विजय से इस पे।
इज
एक
डेफिनेटली बेटर रिटन, और उसमें आप वेस्टेड भी ज़्यादा हैं और वो
हाँ
कहानी भी टाइट है. अंजाम तो मुझे इतनी याद भी नहीं है, और शायद अंजाम मैंने 2 या 3 बार ही देखी. लोग कहेंगे 2 या 3 बार के बाद कैसे याद नहीं है, पर मुझे लगता है अंजाम मैंने
हाँ
कभी दोबारा पिक की है इंडिया से निकलने के बाद. तो हाँ, अंजाम में, और बहुत जल्दी अंजाम में जब आप फिल्म देख रहे होते हैं, इतना मुझे याद है जो तुमने मुझसे पहला सवाल किया था कि आप रूट कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि उसके मरने पर लोगों को
हाँ
अफसोस
मैं
हो.
उसी पे वापस आना चाह रहा था।
हाँ,
हाँ
अंजाम में तो बहुत जल्दी एस्टेब्लिश हो जाता है कि ये कैरेक्टर रूट करने लायक नहीं है, तो वहाँ पे क्लियरली आइडेंटिफाई उनकी इवल साइड निकल आती है. और उसमें कोई वो बाइपोलर भी नहीं है, जैसे डर में तो आप थोड़ा कह सकते हैं कि भाई अपनी माँ से बात कर रहे हैं, वो अकेला बच्चा रहा है, दिलीप
वहां पे
ताहिर
रियल
कहते
मॉम
हैं.
है उसकी। हाँ
हाँ, और वहाँ पे मतलब
अंजाम
उनके
में
कोई ऐसे इश्यूज नहीं है. ही इज जस्ट, यानी कि डर का बंदा कोई सेंट है, डर का कैरेक्टर कोई, लोग हम ये कह देंगे आज की जबान में कि भाई उनको डेफिनेटली हेल्प चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए उनको, एक क्या कहते हैं, कंसल्टिंग में एक डॉक्टर के साथ उनके सेशन होने चाहिए, मतलब उनके दोस्त होने चाहिए उनको. वो कैरेक्टर को आप फिर भी वापस ला सकते हैं. अंजाम के कैरेक्टर में आप इंटरेस्टेड ही नहीं है एक स्टेज के, आप कहेंगे नहीं मुझे ये, हाँ मुझे कोई इसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना इस कैरेक्टर को.
और डर की मैं एक और चीज ये भी कहूंगा कि अंजाम में तो आप क्लियरली वो मोटिव एस्टेब्लिश हो जाता है कि भाई रिजेक्ट कर रही है, तो वहां पे उसे वो बुरा लग रहा है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया है ना, वहां पे वो कोई उससे ऐसा कोई ऑब्सेस रहता नहीं है, वो बाद में जब रिजेक्शन उसे मिलता है कि वो हो जाता है, फिर वो करता है। डर में एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि उन्होंने उसके मोटिव ज्यादा बताने की लाइक दे हैव लेफ्ट इट एज ओपन एंडेड कि भाई वो ऐसा क्यों है। केवल एक सीन में वो दिखाया जाता है जब दिलीप ताहिल जाता है और वो डॉक्टर से कहता है कि भाई ये अपनी माँ से बात करता है पर माँ तो मर चुकी है, उसके अलावा दे डोंट गो और डेल्व इन टू दैट मेंटल इश्यूज, कि वो चीज मुझे अच्छी लगी कि लाइक दे आर नॉट गोइंग इन टू दैट डायरेक्शन कि भाई कि वो ऐसा क्यों हो गया या उसका एकदम मोटिव, बिकॉज समटाइम्स लाइक दैट्स हाउ योर ब्रेन वर्क्स और दैट्स हाउ मेंटल इलनेस ऑल्सो वर्क्स कि भाई यू नेवर नो लाइक वाई समबडी इज बिहेविंग दैट वे, तो वो चीज मुझे लगी क्योंकि कभी कभी फिल्मों में हम बहुत स्पून फीडिंग करते हैं कि भाई कि ये था, बट वहां पे बस एक ओपन एंडेड वे में वो दिखाया गया। पर मैं शुरुआती अपने क्वेश्चन पे फिर से आता हूँ और इसको मैं रीफ्रेम करता हूँ कि पहला सवाल था कि वर वी रूटिंग फॉर शाहरुख खान, नाउ आई एम आस्किंग यू कि डू यू थिंक डर ग्लोरिफाइज द नेगेटिव कैरेक्टर और द विलन इन द फिल्म। जब हम इतनी बात कर चुके हैं पर
तो इसमें
मैं
तो
समझता
मैं
हूँ इसमें एक बिल्कुल लेयर है, एक और
बिल्कुल,
काफी लेयर्स हैं। हाँ
तो इसमें तो मैं फिर हाल ही में आई फिल्म जानवर की बात भी करूंगा, जिसको एनिमल
एनिमल
तो
जानवर तो अक्षय कुमार की फिल्म थी साकी
उसके बारे में तो फिर
भाई
कभी बात नहीं
एनिमल
करूंगा. वो तो पता नहीं क्या फिल्म थी वो,
है। हाँ
उसमें करिश्मा कपूर थी ना जानवर, अक्षय कुमार.
हाँ
ओके, इससे बताते हैं हम लोगों ने कितनी बेफजूल फिल्में भी देखी हुई हैं, और हमें सब पता है इन फिल्मों के बारे में. काश कुछ ये घंटे वापस ले लें. बट हाँ यार, अब ये सारी चीज़ें ना, डर को जो है, मैंने पहले भी कहा है कि ये हिस्ट्री एक तरह से रीराइट हो रही है, जिसको रिवाइज कहते हैं, राइट, क्रिकेट कमेंट्री को भी, और सोसाइटी को ऐसे चेक, ऐसे चेक पॉइंट लगाने चाहिए कि भाई जो कल गलत था उसको गलत कह दो. पर मैं थोड़ा ये
हाँ
भी मानता हूँ कि वो एक ट्वीट करके हम, हमें नहीं पता किसकी किसकी इंटेंशन क्या थी उस वक्त, राइट. तो मैं किसी को ऐसा मॉरल सर्टिफिकेट पूरी तरह से नहीं दूंगा, जैसे मैंने पहले भी इस
हाँ
पे बात की है. तो मुझे लगता है यश चोपड़ा ने इसको एक वायलेंट लव स्टोरी को, ये वन साइड लव स्टोरी है, इस पे करण जौहर ने एक फिल्म भी बनाई थी, ए दिल मुश्किल, तो एक तरफी लव स्टोरीज बहुत हैं हमारे सोसाइटीज में, जहाँ डेटिंग इतना नॉर्मल नहीं है, बिग सिटीज में भी। तो स्मॉल सिटीज में तो मुझे लगता है तब और भी चैलेंज होगा, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है, कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जब हम बड़े भी हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें नज़र में रखनी चाहिए कि ये कहने के लिए। तो यश चोपड़ा ने फिल्म तो भाई सक्सेसफुल होने के लिए बनाई थी, वो अपनी कहानियाँ ऐसे लिखते थे, पर ये फिल्म बहुत जुदा थी राइट, इससे पहले जो उनकी फिल्में आई थी चांदनी और लम्हे। तो अचानक एक ऐसी लव स्टोरी उन्होंने डाली है जो एक बंदे की कहानी है परसूट में, और वो किस हद तक गुजर जाएगा। तो ग्लोरीफाई ओवरऑल तो बिल्कुल नहीं किया है कि एंड में, अगर आपने सिर्फ एंड देखना है, तो वो किरण वाला सीन मुझे हमेशा लगता है कि जैसे पहले मैंने कहा था, वो लाश वहां पे छोड़ दी, कुछ पता नहीं उनका क्या हुआ, दिलीप ताहिल गए वहां पे, बस सीधा ये लोग आए और हंसे कि एक और वो राहुल ना आ जाए। बट अगर आप, जैसे हमने पूरी पॉडकास्ट में 1 घंटा 40 मिनट लगा दिया है, तो उसमें कहीं ना कहीं गाने शुरू में ही उन्होंने ये कहानी उस बंदे के नजरिए से दिखाई है। अब ये तो जरूरी हो गया कि बात अगर कहानी राहुल के नजरिए की, एक ऐसा आदमी है जिसके सारे इश्यूज हैं, वो शाय है, सिंगल पेरेंट बच्चा है, उनकी मम्मी बचपन में गुजर गई थी, दोस्त ज्यादा नहीं है, तो हाँ उसमें तो फिर वो उनकी जो गहराइयां हैं, डार्क गहराइयां हैं, वो को एग्जिस्ट करेंगी उनकी बाकी चीजों से। जो जुनून शुरू में थोड़ा सा लोगों को लगता है कि भाई हाँ ये बहुत ही प्यार में उसके पागल है, पर किसी को पता नहीं किस हद तक जाएगा। तो उसको ग्लोरीफाई कहीं ना कहीं तो किया है, जैसे कि वो जो गाना आता है एंड में, उस गाने की जरूरत नहीं थी कि वहां पे अभी वो सनी देओल को छुरा मार दिया है और क्या क्या करके आया है राइट, वो बंदा किस हद तक पहुंच गया है। तो वहां पे जो मरा उसको लाइन भी दी गई है, हाँ वो लाइन सबने एंजॉय की थी उस वक्त देख के, क्योंकि हम फिल्म शाहरुख की नजर से ही देख रहे थे। तो पर हाँ अब ये यार, ये कहना ये रिविजन हिस्ट्री है कि आज 31 साल बाद जो आजकल हो रहा है, जैसे कबीर सिंह जैसी फिल्में हैं, तो आई थिंक उनको तो मैं फ्री पास नहीं दूंगा, जहां पे डायरेक्टर और एक्टर बाहर आके डिफेंड कर रहे हैं। क्योंकि और फिर लोग ये भी एक बात कहते हैं जो मैंने इंटरव्यू में देखी है, बॉबी डोल ने भी कई बार कहा है कि नहीं ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में, हाँ हैं, दिखाओ, इससे भी ज्यादा घिनौनी चीजें दिखाई गई हैं, पर कहीं ना कहीं एक आर्ट है स्टोरी टेलिंग में, तो जहां पे आपको डिस्टिंग्विश करना है अपने कैरेक्टर से। जैसे मैंने टैक्सी ड्राइवर की तुमसे बात की थी, जो हम दोनों की फेवरेट फिल्मों में से एक है, तो आई थिंक अमेरिका में भी वो फिल्म मिसअंडरस्टूड थी, 10-12 साल तक लगता है डायलॉग चला था कि इज इट अ रेसिस्ट फिल्म, और डिनेरो और स्कोरसेजी हमेशा कहते रहे इट्स नॉट अ रेसिस्ट फिल्म, इट्स अबाउट अ रेसिस्ट। तो वो चीज कब समझ आती है, और समझ में आने वालों को फौरन आ जाती है जो उनका नजरिया, और कई लोगों को कभी नहीं आती, क्योंकि इस पे ज्यूरी डिवाइडेड है कि आप का ओवरऑल नजरिया, पहलू किस पहलू से आप जिंदगी को देख रहे हैं राइट। तो वही है कि अब इसमें भी एनिमल का कंपैरिजन बहुत ज्यादा बनता है, और कबीर सिंह का, क्योंकि फिल्में हाल में ही आई पिछले 3-4 साल में, तो यहाँ पे जो भी प्रैक्टिसेस दिखाई गई हैं, जो मिसोजिनी की बात की गई है, शोविनिज्म की बात की गई है, तो दिखाओ वो बिल्कुल दिखाओ ऐसे लोग हैं, पर कहीं ना कहीं आप ये दिखाओ कि जिन पे वो अत्याचार है, जिन पे वो टॉर्चर हो रहा है, जैसे प्रीति का कैरेक्टर है कबीर सिंह में, वो लोग ये एंजॉय नहीं कर रहे। और ये ट्रूथ, जैसे कहते हैं ना, सच्चाई के दो पहलू हो सकते हैं, कि वो उससे बंदे से प्यार भी कर रही है, पर जिस दिन उसने उसको मारा है, टॉर्चर किया, वो किसी सहेली से, किसी बोल रही है कि मुझे निकालो, मैं डरती हूँ, और फिर हमने सुना है अब्यूसिव रिलेशनशिप में लोग, इट्स अ लूप, हमें इतना मालूम तो नहीं, पर सुनने में आया कि लोग उस चीज से निकल नहीं पाते, क्योंकि वहां पे एक अजीब किस्म का प्यार भी है, और वहां एक एक अब्यूसिव नेचर है जिसकी मर्यादा नहीं रखी जा रही, तो लोग निकलना, कोई नहीं चाहेगा भी उनको थप्पड़ मारो या उनका गला पकड़ो, हम नहीं है किसी की पोजीशन में। तो आई थिंक यहाँ पे वांगा, शाहिद कपूर, कबीर सिंह की अगर बात की जाए, तो वहां पे ये लोग अनअपोलोजेटिक थे, इन्होंने जरूर जान डाली है कहानी में, एक्टिंग अच्छी है, पर स्टोरी टेलर्स ये लोग डिस्टिंग्विश कहीं से नहीं कर पाए उस फिल्म में कि वो लड़की को अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं शाहिद कपूर, और एंड में भी जो एक इंडियन कन्वेंशन है कि ही गेट्स अ गर्ल, तो वो नहीं होना चाहिए। और लोग फिर कहेंगे उसने एक्टिंग अच्छी की है, और ये बहुत जल्दी आपको हेट वगैरह का वो दे दिया जाता है, इसीलिए मैं ट्विटर से दूर ही रहता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ना मेरे पास 280 कैरेक्टर की आर्ट है वहां पे लिख के दिन रात बहस करने की, और कुछ आर्ग्यूमेंट से आप नहीं जीतोगे। टू थिंग्स कैन बी ट्रू राइट, एक्टिंग अच्छी हो सकती है, फिल्म खराब हो सकती है, फिल्म का मैसेज टोटली खराब हो सकता है, तो वो सब चीजें हैं। तो यहाँ जो जूही का किरदार है, वापस डर पे जाए, उसको तो राहुल कहीं से पसंद ही नहीं है। तो नंबर 1, सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली चाहिए यश चोपड़ा, हल्का सा अगर हम कहें राहुल को फेवर भी कर रहे हैं, पर ही ऑलवेज मेड इट क्लियर कि जूही को वो जो बंदा फोन कर, किसको पसंद आएगा, बंदा फोन कर रहा है और आके टच कर रहा है और भाग रहा है, तो वो तो क्लियर है, ही इज, एक लड़की की नजर से देखा जाए, ही इज ऑब्नॉक्शियस, ही इज नॉट नीडेड, ही इज अ न्यूसेंस। और द मोमेंट वो पिक्चर आगे बढ़ती है, वो लोगों को मार रहे हैं, अपने फिर मरे हुए अपने दोस्त की मौत का ही फायदा उठाते हैं अनु कपूर का, तो आई थिंक वहां पे तो यश चोपड़ा ने उसको ग्लोरीफाई नहीं किया है, अगर मैं कहूंगा 70% ग्लोरीफाई नहीं किया, हाँ 20-25% उस कैरेक्टर को रिलेटेबल बनाने के लिए गाने वाने हुए हैं और उसकी बैकग्राउंड दिखानी बहुत जरूरी है, वरना ही इज नो डिफरेंट देन रंजीत को कोई लड़की चाहिए, राइट? एक फिल्म में रंजीत को 10 मिनट के लिए वो दिखाया, फिर उसको एंड में अमिताभ मार रहा है जो भी हीरो है, तो एक
हाँ
फिल्म एक, हाँ तो मेरा ये कहने का मतलब है, और आई एम श्योर तुम भी एनिमल और इन फिल्मों के बारे में कहना चाहोगे, क्योंकि अब हमने ये एक मुद्दा छेड़ दिया है, इससे पॉडकास्ट खत्म
हाँ
करेंगे, तो तुम्हारा क्या
हाँ
नजरिया है?
मैं तो काफी हद तक सहमत हूँ जो आपने कहा। डर का भी जो आपने आखिरी सीन आप कह रहे हैं कि थोड़ा सिंपैथी वो आ जाती, पर उसमें भी आप अगर देखें तो जो राहुल है वो यही कह रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, राइट। तो एक नजरिया ये भी है देखने का कि भाई कि उसको भी, इवन दो मैं उस चीज से उतना एग्री नहीं करता, मुझे लगता है वहां पे वो फिल्म वो मर जाना चाहिए और उसका कोई डायलॉग नहीं होना चाहिए। बट अगर आप वैसे भी उसको उसका एनालिसिस करें तो वो देखें कि भाई वो कह रहा है कि मैं गलत कर रहा था, कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे गलत मत समझना, आगे वो उसका हम एक कहने का तरीका, पर वो मान रहा है कि वो गलत है ना। अब जो ये एनिमल जैसी फिल्में हैं, मैं अपफ्रंट ये कहता हूं कि यार मैं कभी इन फिल्म से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, और इसका कनेक्शन का मेरा मतलब ये नहीं है कि ये फिल्म रियल नहीं है। मैं बिल्कुल उस चीज में बिलीव नहीं करता हूँ कि फिल्म को रियल होना चाहिए या उसमें रियल किरदार होने चाहिए। एक डायरेक्टर की, एक मैं हमेशा मानता हूँ, एक जिम्मेदारी है या डायरेक्टर का एक व्यू है कि वो मुझे एक दुनिया में लेके जाते हैं। अब वो दुनिया में कुछ भी कैरेक्टर्स होते हैं और वो दिखा रहे हैं और मुझे बिलीवेबल कर रहे हैं उनको। और मैंने आपसे पहले भी ये बात कही, तो मुझे वहां पे बिल्कुल कोई इस चीज से दिक्कत नहीं है कि भाई कि वहां पे इतने सारे लोग आ रहे हैं और वो लड़ रहे हैं। अगर सनी देओल आपने बिलीवेबल बना दिया है रैम्बो को या सनी देओल जैसे एक्टर्स को, जिनको देख के मुझे लग रहा है हाँ ये 10 लोगों को मार सकते हैं, तो इट्स बिलीवेबल फॉर मी। कि रैम्बो को मैं देख रहा हूँ और मेरे को पता है कि भाई को लड़ लेगा वो बंदा अकेले दुनिया से, तो मैं वहां पे बिल्कुल उस वे में मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा एनिमल को। पर हाँ, क्या आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मे बी 50s में नहीं बनती थी, 60s में नहीं बनती थी, पर धीरे धीरे जब आप टाइम के साथ इवॉल्व करते हैं तो सिनेमा भी इवॉल्व हुआ है, जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई है। अब जो चीजें हम अपने बच्चों को सिखा रहे थे 60, 70, 80, 90 में, वो शायद अब नहीं सिखाएंगे। अब हम थोड़े से, हमारा बहुत चीजों के बारे में नजरिया बदला है ना। तो उसी वे में मैं समझता हूँ सिनेमा भी वैसी है कि वो इवॉल्व करनी चाहिए। तो आप जब अभी की सिनेमा दिखा रहे हैं तो आपके ऊपर बिल्कुल ज्यादा, एक तो एक क्या बोलते हैं कि ज्यादा नजरें पड़ेंगी और आपको क्रिटिसिज्म भी ज्यादा मिलेगा और बहुत सारे लोग आकलन करेंगे। अब जैसे कि हम बैठ के डर के बारे में बात करेंगे, शायद 93 में इंटरनेट होता हमारे पास तो उस समय शायद डर को भी ऐसे ही डाइसेक्ट किया जाता और जैसे कि हम आज कर रहे हैं ना, कि उस समय हो सकता है हम कहते कि हाँ भाई ये नहीं दिखाना था, वो नहीं दिखाना। तो उसमें मुझे लगता है कि एनिमल का जो क्रिटिसिज्म है वो बिल्कुल वैलिड है, कि कुछ लोगों को पसंद भी आई है फिल्म ने, इतने पैसे कमाए तो डेफिनेटली बहुत सारी ऑडियंस के साथ वो कनेक्ट भी करी है। पर इंडिविजुअली मेरा ये मानना है कि मैं बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाया। मैंने फिल्म थिएटर में नहीं देखी, मैंने नेटफ्लिक्स पर देखी, पर मैं इमोशनली कभी भी उस कैरेक्टर से कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाया। कुछ चीजें थी फिल्म की जो हाँ आप कह सकते कि हाँ ठीक है, बट अगेन इट लुक्स लाइक कि बहुत सारी चीजें फोर्स लगती हैं, बहुत सारी चीजों का जो मैं डर में जैसे कह रहा था कि वो बड़ा ओपन एंडेड है, छोड़ा है कि वो अब शाहरुख खान का कैरेक्टर वैसा क्यों है। अब रणबीर कपूर का कैरेक्टर वहां पे एनिमल में मुझे लगता है कि आपने थोड़ा सा जो शुरू में दिखाया है कि वो किस वजह से उसके मोटिव्स हैं और वो क्यों ऐसा हुआ है, वो मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लगता है और वो मुझे लगता है बड़ा हाफ बेक्ड है। और उसके अलावा जो मिसोजिनी की हम बात करें तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि इट्स अ मिसोजिनिस्टिक फिल्म, कि उसमें जिस तरह से आप डायलॉग्स डाल रहे हैं, और ये बिल्कुल आपने जो एक टैक्सी ड्राइवर के बारे में कहा कि इट्स अबाउट अ रेसिस्ट, राइट, पर वहां पे मुझे एक कैरेक्टर दिख रहा है जो वो चीजें कर रहा है। यहाँ पे एक लगता है कि एक जो मेरे ख्याल से जो कहते हैं ना कि कैम वो कि फोर्थ वॉल ब्रेक करके वो मुझे बताने की कोशिश कर रहा है रणबीर का कैरेक्टर, कि भाई ये ऐसा है कि वो कुछ कुछ सीन्स हैं रश्मिका के साथ भी उसके, जहां पे मुझे लगता है बड़े फोर्स्ड है कि उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, वो कहानी से मतलब आप उसको मिसोजिनिस्टिक एंगल भी अगर हटा दें तो मैं बिल्कुल कहानी बिल्कुल डिसजॉइंटेड है वो, कि भाई ये डायलॉग कैसे क्यों बोल रहा है ये बंदा अचानक से, है ना। उसको अगर उसको उसका मोटिव बदला लेना है या कुछ है, अचानक से उसके दिमाग में ये बात क्यों आ रही है, तो वहां पे मुझे
मैं
बड़ी दिक्कत है उस फिल्म से। हाँ, कहिए,
हाँ,
कुछ
मेरे
कहना
पास भी
चाहिए।
बहुत कुछ है कहने को, पर वो ये कि मैं ज़्यादा कुछ कंट्रोल में रहूँगा क्योंकि हम एनिमल पे तो पॉडकास्ट कभी करेंगे नहीं, पर अब ये डर के साथ ये कंपैरिजन बहुत वाजिब है। तो मैं दो चीज़ें कहूँगा यार, एक तो मैं अपने नज़रिए से कहूँगा, मुझे नहीं पता कि बाकी लोग क्या सोचते हैं। हम जिस समाज में आजकल रह रहे हैं ना, हम इतने इन्फ्लुएंस हैं, उठते फ़ोन के साथ हैं, सबके व्यूज़, और फिर हमने एक दूसरे को व्हाट्सएप करें, देखा उसने ये ट्वीट किया, उसने वो कहा, तो ये फेमस लोगों पर भी होता है। तो आई थिंक एक वांगा की परछाई है कि अब वो वांगा अगर वो लोगों से पनाह मांग रहे हैं कि भाई मेरा इंटेंट ऐसा नहीं था, आप मुझे समझ नहीं रहे, तो दैट शिप हैज सेल्ड। क्योंकि उन्होंने दोनों फिल्मों के बाद जिस तरह से फिल्म क्रिटिक्स और बाकी और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को जिस तरह से उनकी बेइज्जती की है, राइट, एक टोन होती है। तो यही मेरा मानना है, यही फिल्म अगर अनुराग कश्यप ने बनाई होती या किसी और डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी ने बनाई होती तो उसको इतना हेट नहीं मिलता, क्योंकि एक वांगा का शेडो है, राइट, जो इस फिल्म पे छाया हुआ है। और अब मैं बात करता हूं कि कहां ये फिल्म
उसपे
में
पर साकिब
नहीं,
भाई,
एक
एक चीज और मैं कहना चाहूंगा उस पर, फिर आप कहिएगा। सॉरी, आप अपनी बात भूलिएगा मत, आप
नहीं,
नोट कर लीजिए।
मैं तुम्हें 19 बार काटा
हाँ
है, तुम 2 बार तो काट ही सकते हो।
मैं बस ये कह रहा हूं कि जो अनुराग कश्यप और आपने दिवाकर बैनर्जी की बात करी, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इंटरव्यूज में आके उस कैरेक्टर को डिफेंड करते हैं, जब आप कहते हैं कि भाई कि एक रिलेशनशिप में मैं चांटा मार सकता हूँ लड़की को, तो मुझे लगता है वहां पे आपको बहुत ज्यादा बैकलैश मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, वो
हाँ
बिल्कुल
एग्जैक्टली, वही मैं कह रहा हूँ।
वाजिब है मेरे
हाँ
हिसाब
वही
से, है
मैं
ना।
कह रहा
तो
हूँ कि जब आप
इसलिए
डिफेंड
अगर अनुराग कश्यप आके ये कहे कि मैंने फिल्म में ये दिखाया है और बिल्कुल लड़का मार सकता है और ये, तो मेरे को लगता है उसे भी मिलेगा क्रिटिसिज्म। अब वो बिल्कुल डिबेटेबल है कि कम मिलेगा क्योंकि उसकी रेपुटेशन ज्यादा है या जो भी है, पर मैं मतलब विदाउट गोइंग इन टू दैट, कि मुझे लगता है कि जो वांगा आके डिफेंड करते हैं अपने कैरेक्टर्स को, और वो जैसे हम कह रहे हैं राइट, कि अब डर के, अगर डर के कैरेक्टर को आके यश चोपड़ा और शाहरुख खान डिफेंड करने लगे कि यार हमने ये सोच के, तो फिर मुझे लगता है कि बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप ये, आपको एट द आउटसेट ये कहना पड़ेगा कि इट्स अ फिल्म लाइक अबाउट अ मिसोजिनिस्ट, राइट, इट्स अ फिल्म अबाउट अ गाय हु डजंट रिस्पेक्ट विमेन, राइट, ये तो फिर आई एम ओके विद दैट, कि आप कह रहे हैं कि भाई तो फिल्म, पर आप आके कह रहे हैं कि नहीं ये तो कर सकता है ना, वो तो उस फिल्म में ऐसा दिखाया है, तो इस फिल्म में, तो
नहीं,
वहां पे मुझे बड़ी दिक्कत है उस चीज से, उस मैसेजिंग से। हाँ
और यही मेरा ओपनिंग पॉइंट था कि शूट द मैसेंजर, क्योंकि वो कबीर सिंह में ऐसे डिफेंस कर चुके थे, राइट, और फिर उन्होंने लोगों को यही बोला था मैं लोगों को दिखाऊंगा वायलेंट फिल्म क्या होती है, राइट। तो यार एक मैंने राइटिंग क्लास ली थी बहुत साल पहले, तो उसमें यही सिखाया गया था जब आप कुछ लिखते हो ना तो स्टोरी इज द फोकस, आपको अपनी शो ऑफ नहीं करनी, एक अच्छा सा एक सेक्सी सा इंग्लिश आप सेंटेंस लिख रहे हैं जिसका कुछ लेना देना नहीं। जो कई लोग ट्वीट भी करते हैं, बड़ी हैवी वर्ड्स यूज करते हैं, वो बात साधारण शब्दों में भी कही जाती है, क्योंकि देन यू आर गोइंग, यू ड्रिफ्टिंग अवे जो आपका असली पॉइंट है, राइट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर वांगा ने ये कहानी एक एक बेटे के उसमें बनानी थी, बाप को बचा रहा है और एक उसकी एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट साइड बाय साइड डेवलप हो रही है, इस लूजली कनेक्टेड, कहीं से ग्रेट फिल्म नहीं होती तब भी है, पर ये बर्दाश्त हो सकती थी अगर, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि वांगा गॉट इन द वे ऑफ हिज ओन स्टोरी। अब जैसे 2-3 सीन है, मैं उनके बारे में बोलना चाहूंगा कि जैसे उनकी बहन को उनके जीजा जी शुरू में रणबीर के हल्का सा गाल पे पुश करते हैं तो उसको बुरा लगता है, बहन को बचाने के लिए वो थोड़ा ओवर द टॉप है, वो गन लेके कॉलेज पहुंच जाता है, राइट, वगैरह वगैरह। चाहे कितने भी आप अल्फा मेल हो, आप अपनी बहन और माँ को बहुत मानते हैं, हमारी सोसाइटी में ज्यादातर है ये। तो मुझे वो चीज समझ नहीं आई कि भाई जब रणबीर को डॉक्टर्स की टीम मिली हुई, उनकी मम्मी भी वहां बैठी है, वहां पे वो नर्स से बेहूदगी कर रहे हैं, तुम कितने बार करती हो, वहां उनकी माँ भी बैठी हुई है। अब उस सीन का इवन जो रणविजय का कैरेक्टर है, तालमेल नहीं है, उसने अपने माँ और बाप के लिए इतना कुछ करने के लिए बंदा तैयार है तो अपनी माँ के सामने बैठ के और डॉक्टर्स के ऐसी बात करेगा, तो वहां मुझे लग रहा है कि इनकंसिस्टेंट है। क्योंकि वांगा ने शायद सीन
हाँ
किसी इटालियन माफिया फिल्म में देखा है, सोप्रानोज में। तो एक मेरा एक फेवरेट एक ये भी वो है जो मैं कई बार तुमसे और विजय से अलग से ही बात करता हूँ कि लोगों को बहुत हाफ बेक नॉलेज है, कहीं सुनी बात तो कहीं जाके रख दी, ना उस बात का कॉन्टेक्स्ट पता है, ना उस बात की गहराई पता है, पर वो शो ऑफ करनी है। हम एक कमरे में गए, भाई मैंने तुमसे कोई बात सीख ली, अब मेरी रियल लाइफ में तो किसी को पता नहीं साहिल कौन है, अब मैं किसी बर्थडे पार्टी पे गया, वहां मैंने तुम्हारी सुनी बात सुना के लोगों को हंसा दिया और वहीं पे फॉल्स ब्रावाडो मिला। तो मुझे कहीं ना कहीं वांगा में ऐसा लगता है, आई डोंट नो द मैन बिल्कुल, क्या मैं 100-200% गलत हूँ, पर मुझे सारे सीन्स में ये लगता है कुछ ना कुछ आपने बस कहीं देखा, आपने उसको वहां जोड़ा। एनिमल इज अ हाईलाइट ऑफ, जिसे कहते हैं असॉर्टमेंट ऑफ, वो उसमें कनेक्टिविटी बहुत कम है। और फिर जैसे मेरी वाइफ ने बोला था कि भाई ये मेल टेस्टोस्टेरोन जो कहते हैं कि आजकल के एक आम आदमी को या यंग लड़के को, अब जैसे तृप्ति देमरी और रणबीर का जो सीन है जो वो गाने में लेटे वगैरह में बिना एक चादर पे बिना कपड़ों, उस सीन की क्या जरूरत है? ये नहीं मैं कह रहा हूँ आर्ट नहीं है, पर उसमें
मैं
जस्टिफाई
सही
करो
कहूँ
उस
तो ताकि
सीन की क्या जरूरत है? वो एक आप एक मेल ऑडियंस को टारगेट करके वो सीन दिखा रहे हैं, फिर जूता चाटने की क्या जरूरत है? और फिर जूता चाटने के बाद जो उसके कजन हैं उनको बाहर वो कहता है, जो भी कजन का नाम है बलबीर या सतबीर, इज्जत से छोड़ के आना, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कैरेक्टर क्या है। एक मिनट जूता चटवा रहा है, फिर कह रहा है उसको इज्जत से छोड़ के आना, उसको मार भी नहीं रहा, और फिर नर्स के सामने अपनी बीवी के साथ वो इंटीमेट हो रहे हैं। तो ये वांगा की मुझे लगता है कुछ फैंटेसीज हैं, कुछ वियर्ड चीजें हैं जो दिखाना चाह रहे हैं, और इट गेट्स लॉस्ट इन द वे कि ये कैरेक्टर ऐसा है या नहीं है। तो मुझे तो ये इश्यू है कि भाई उन्होंने क्रिटिक्स या जो भी लिबरल्स ने मीडिया ने उनकी फिल्म की कबीर सिंह की बुराई की थी, तो उन्होंने बेसिकली एक छोटा सा फक यू डाला है सबके लिए, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ कर तो सकते हो, फिल्म 800 करोड़ बना भी गई, बट देन बी ए मैन इनफ कि अगर कोई कह रहा है कि भाई ये बेहूदगी है और ये आपका क्या वर्ड मैं ढूंढ रहा हूँ कि आप जुवेनाइल थिंकर हैं, आप 16 साल के बच्चे की तरह हैं, कि किसी ने आपसे कुछ कहा तो आप आर्ग्यू कर रहे हैं, या तो आप देखें ना कि आपने जो किरदार लिखा है कहीं कनेक्टिविटी है, या तो दिखाएं कि भाई जो रणविजय का कैरेक्टर है वो घर में 16-17 साल की उम्र में वो कॉल गर्ल्स ला रहा है, फिर तो मुझे समझ आ रहा है कि वो बंदे को किसी की रिस्पेक्ट नहीं है। वो वैसे बहन को कोई कह रहा तो वो कॉलेज लड़ने चला गया, बहन को जीजाजी ने हाथ लगाया, दीदी इसने हाथ कैसे लगाया, फिर वो ये कर रहा है एक नर्स के सामने, क्योंकि वो सीन सोप्रानोज है कहीं पे था, मुझे याद नहीं है कहाँ पे था। तो
हाँ हाँ
ये मुझे
बिल्कुल
एक ना रूम ए और
बिल्कुल
रूम बी की मुझे बहुत लोगों से प्रॉब्लम है, मुझे खुद इतनी गहराई नहीं है लाइफ में, तो मुझे इतना पता है कौन फेक कौन फॉल्स प्रॉफिट है, चाहे वो ट्विटर पे कोई लोग अपनी झक मार रहे हो, चाहे वो कोई फिल्म में, अब भाई वांगा तो बहुत बड़ा आदमी है कि उसने अपनी फिल्में बना दी तो हम कौन है, पर सोसाइटी के बारे में तो मुझे भी उतना पता है इतना वांगा को पता है, शायद मुझसे 2 साल छोटा है। हाँ फिल्मों के बारे में उसे ज्यादा पता होगा, मुझे कभी पता भी नहीं होगा क्योंकि मैंने कभी फिल्म सेट भी नहीं देखा ना मैंने कभी कैमरा देखा है। तो आई थिंक मेरा ये मानना है कि, और वही मैंने कहा था, अगर ये 3-4 सीन निकाल दी जाए और वो जो जबरदस्ती के जो गन वाला सीन है, और यही पिक्चर अगर दिबाकर बैनर्जी ने बनाई होती, फिर हम इस फिल्म को इतना मिसोजिनिस्ट नहीं कहते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी साइके में ये जरूर है कि जिसने बनाई वो कहना क्या चाह रहा है। और मैं फुल मानता हूँ कि वो विदाउट
हाँ
हिटिंग रश्मिका वो ही इज प्लेइंग विद द पीपल्स इमोशंस और माइंड्स, और वो काफी सीन ऐसे हैं जहां पे मिसोजिनी करवा रहे हैं दिखाने के लिए कि आई डोंट केयर, पर ये अल्फा मेल है। फिर अल्फा मेल की डेफिनेशन पता नहीं क्या, सबने 2-3 वर्ड सीख लिए हैं और हर बंदा आके इस पे कुछ टिप्पणी दे रहा है, तो देर शुड बी सम ग्रेस मेरे हिसाब से। और मुझे नहीं पता, तुमने अच्छा एग्जाम्पल दिया कि शाहरुख खान और यश चोपड़ा ने जब डर के बारे में क्रिटिसिज्म हुआ होगा कुछ तो रहा होगा, या
हाँ
शाहरुख खान और
बिल्कुल नहीं
अब्बास मस्तान ने,
उस जमाने में
हमें
उतना
याद नहीं,
क्रिटिसिज्म,
हाँ इस
हाँ
तरह
नहीं
का
उस
नहीं।
जमाने में क्रिटिसिज्म आपको शायद न्यूज़पेपर के रिव्यूज या जो भी होंगे जर्नलिस्ट वही देते होंगे, है ना। अभी तो आप ट्विटर पे जाइए तो आपको हर बंदा फिल्म देख के आ रहा है थिएटर में, तो वो आपको ट्विटर पे फेसबुक पे जहां पे उसको मिल रहा है मौका, है ना, वो कह रहा है अपनी बात कि भाई मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, मुझे ये चीज अच्छी लगी या नहीं लगी, है ना। तुरंत फैन पेजेस बन जाते हैं और अब मतलब आप एज अ नॉर्मल पर्सन भी आप अपनी व्यू दे सकते हैं, है ना, और वो शायद डायरेक्टर एक्टर तक पहुंच जाती है। तो बिल्कुल फर्क है वो, आप जिस दुनिया में आज रह रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा फीडबैक मिल रहा है, उस समय शायद शाहरुख खान को उतना फीडबैक नहीं मिला होगा, बस आपको फीडबैक का जरिया रहता था कि बॉक्स ऑफिस पे कितना कलेक्शन हुआ तो आपको पता चला फिल्म चल गई नहीं चली। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को उस समय भी, मैं मानता हूं कि उस फिल्म में कुछ दिक्कत लगी, हो सकता है, आई एम जस्ट सेइंग, नॉट जस्ट डर, कोई भी फिल्म हो सकती है ना, कि उसमें आपको लगे कि भाई कि इस किरदार को आपको ऐसे नहीं इसको। और हमने कितनी बार रेट्रोस्पेक्टिवली बात की, जैसे कि आपने कहा कि पुरानी फिल्मों में जो वो ब्लैक्स को दिखाया जाता है वो थोड़ा रेसिस्ट कोनोटेशन होते हैं उसके। हाँ अगर वो शायद अब आप करेंगे, जैसे फैशन एक मूवी है जिसमें वो बहुत
हाँ
लाइक
टू मच या
क्वेश्चनेबल सीन है, राइट, जहां पे
बहुत
प्रियंका
ज्यादा,
चोपड़ा स्लीप्स विद अ ब्लैक गाय, एंड देन उसको मतलब लाइक आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, बट आप वहां पे एक व्हाइट पर्सन को भी दिखा सकते थे,
हाँ
है ना,
बिल्कुल,
वो
इंडियन को दिखा सकते,
चीज।
किसी को भी दिखा सकते थे, राइट।
हाँ
तो आपने
आप किसी
उन्होंने
को भी
दिखाया
दिखा
कि वो
सकते
तो
हैं।
एक अल्टीमेट, बिल्कुल जैसे ना गिर गया कोई, इससे
हाँ
तो
हाँ
कोई
बिल्कुल
बुरा काम हो ही नहीं सकता, अब ये कैसे
हाँ,
उठेगी। तो
और
और अगेन वो
फैशन के टाइम पे
भंडारकर भी एक
हाँ
बहुत फेक प्रॉफिट है, उनके बारे में जितनी बात की जाए कम है,
हाँ
मतलब जितनी
आई
बुराई की
थिंक उसके
जाए।
बारे में बाद में बात करेंगे, पर मैं जस्ट यही बात कहना चाह रहा था कि फैशन में जो कि सोशल मीडिया टाइम्स पे रिलीज हुई थी, तो और आप देख लेंगे कि अगर उस समय उतना एक्टिव होते सोशल मीडिया पे लोग जो कि अब हैं, तो उसको भी उतना क्रिटिसिज्म मिलता। और उस सीन को मैंने शायद देखा भी कि किसी इंटरव्यू में मैंने सुना भी था, किसी क्रिटिक्स का मैं नाम भूल रहा हूँ, कि उन्होंने कहा था कि भाई कि ये क्या दिखाई दी आपने चीज, और और मैं सच कहूं तो जब मैंने फिल्म देखी थी तो उतना नोटिस नहीं किया था, क्योंकि उस समय आप शायद उस माइंडसेट में नहीं रहते थे। पर हाँ, इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सीन कि जो आप जो दिखा रहे हैं, मतलब आप उसको दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं। तो आज के जमाने में मुझे लगता है कि आप कोई भी फिल्म बनाएंगे तो आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। तो और ये बड़ा वीक टेक है मुझे लगता है कि, और मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं ये बात, कि जब लोग कहते हैं ना कि उसने क्रिटिक्स के लिए, आई मीन देन प्रॉबेबली ही हैज नॉट मेड अ फिल्म, राइट? वो तो एक रैंट हो गया, राइट? कि किसी ने यूट्यूब पे गए, रिकॉर्ड किया अपना वीडियो और बना दिया कि भाई मैं इसको, आप वो जाके कर दिया, आप फिल्म क्यों बना रहे हैं, राइट? आप इतने मेहनत करके,
नहीं नहीं मैं और
तो
मैं वीक टेक को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ दैट्स हिज वीकनेस की ही गॉट इन द वे ऑफ द स्टोरी, कि जो तो आप
यस
कहना चाह रहे हो उसमें कोई तालमेल ही नहीं है. और बॉबी डेओल के
हाँ
सीन की भी बात की जाए, वो जो एक वो सीन है जो इतना फेमस गाना हो गया है, जो जो भी आई थिंक मिडल ईस्टर्न सॉन्ग है, तो उसमें उस सीन में इतना कुछ हुआ है 2 मिनट के अंदर, कि एक ब्रूटल मर्डर, फिर अपनी वाइफ का रेप, और फिर 2 वाइफ्स को और सेब खाते हुए कमरे में बुलाना, क्या है वो सीन.
हाँ
जबकि जबकि
ये
ओवरऑल ड्योल के किरदार से इस फिल्म में एक, मैं कैसे कहूं कि ड्योल का किरदार इस फिल्म में एक 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 मेमोरेबल कैरेक्टर है, पर मेरे हिसाब से अगर इस सीन को हटा दिया जाए, क्योंकि उसको बिल्कुल ही एक एक बहुत ही सैवेज किस्म के लोग दिखाए हैं. और फिर जब वो आखिर में भी जब रणबीर कपूर वहां पहुंच के, रणविजय जो उनका कैरेक्टर है, ड्योल का पता पूछते हैं, तो वो 3 बीवियां रो क्यों रही हैं, उनको तो इन्होंने बिल्कुल एक पीस ऑफ मीट की तरह ट्रीट किया है. कहीं ना कहीं तो किसी बीवी को होना चाहिए ना कि गुड रिडेंस. तो वो जो एक चीज है ना कि सोसाइटी की सबमिसिवनेस है, कि वो ऐसा अब्यूज कर रहे हैं, फैक्ट्री की तरह बच्चे कर रहे हैं. और मैं इसमें रिलीजन नहीं लाऊंगा, वो किसी भी रिलीजन का आदमी हो सकता था, 8 बच्चे उनके, वो क्या सीन है. और वो वांगा की क्या ठीक है, बॉबी डेओल और रणबीर दोनों ने एक्टिंग अच्छी की है, मैं उस ये भी मानता हूँ कि चाहे स्क्रिप्ट कितनी भी कमजोर है, उनको बॉबी के लिए तो ईजी है, उनको 12-13 मिनट मिले हैं तो उन्होंने अपना काम कर दिया. रणबीर को आई थिंक हाईलाइट्स में फिल्म मिली है, और मुझे लगता है बहुत अच्छे कलाकार हैं, पर फिल्म काफी कमजोर है. तो कहीं ना कहीं अब लोग कहेंगे कि उनकी चॉइस कैसी है, वो सुनने वालों का नजरिया है. अगर कोई रणबीर फैन यहाँ तो मैं उनके साथ सहमत हूँ, मुझे भी रणबीर बहुत पसंद है, तो उनका काम तो अच्छा है, पर इस कान पे हम कितने क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं कि डिड ही ऑल्सो नॉट गेट द मेमो कि इस फिल्म में क्या हो रहा है, या फिर वांगा इतने गजब के स्टोरी टेलर हैं, जब उनके साथ लोग बैठते हैं तो वो एक दूसरे दुनिया में ले जाते हैं. क्योंकि ये तो भाई
हाँ
साहिल, जितना तुम्हें और मुझे फिल्मों के बारे में पता है, अनिल कपूर, रणबीर कपूर, बॉबी डोल, इन सबको बहुत ज्यादा पता है, हम तो फैन है. तो ये
हाँ
सब
नहीं देखिए, उनके
नहीं,
लिए मेरे ख्याल से, ताकि भाई
एक
मैं
सेकेंड,
ये
और
कहूंगा,
इट कुड ऑल्सो भी
हाँ
बिजनेस, कि भाई जब आपने है तो आपको फिल्म के प्रोमोज और इंटरव्यूज देने हैं, तो आपको फिल्म प्रमोट भी करनी है, उनका अपना
हाँ
काम भी
हाँ
है. बट कई बार मुझे लगता है कि आपका सोसाइटी का आईना इतना कमजोर क्यों है. आप एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, फिल्म इज नॉट अ साइंस, फिल्म इज अबाउट इमोशन, फिल्म इज अबाउट एक एक बैलेंस की बात है. आप क्या दिखा रहे हैं, दिखाओ कितना ही बुरा, पर डिस्टेंस कर लो अपने आप को उस बुराई से. तो मुझे लगता है एनिमल कंफ्यूज है बहुत ज्यादा फिल्म, वांगा बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं जिसके कुछ सेंस नहीं बनती, कहीं अपने दिमाग में टैरेंटिनो बन रहे हैं, कहीं वो गॉडफादर बना रहे हैं, और कहीं फिर वो अनुपमा चोपड़ा को भी शट द फक अप कहना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो. पर ओवरऑल
हाँ।
ये
और मुझे
प्रोडक्ट
शायद
बहुत अनकन्विंसिंग है.
उस चीज से ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप, जैसे कि आप मैं कैसे कहूँ कि आप एक फिल्म बना रहे, तो आप एक कहानी कहना चाह रहे हैं ना। आप किसी और के लिए, मतलब अगर फिल्म बना रहे हैं कि मैं इसको जवाब देने के लिए फिल्म बना रहा हूँ, या आई मीन दैट्स प्रॉब्ली नॉट द राइट प्रोसेस ऑल्सो। मतलब मुझे नहीं लगता कि फिल्म मेकिंग उसके बारे में होनी भी चाहिए कि
मे बी
भाई
इट्स नॉट, पर मुझे ऐसा
नो
लग रहा है, क्योंकि यू स्टार्ट एडिंग डॉट्स कि भाई ये बंदा ऐसे बिहेव
नो
कर
नो
रहा है. हाँ
इट इज आप देख लीजिए ना, वो सीन्स जो डाले गए हैं, और वो जिस तरह से, कि आई थिंक यू कैन क्लियरली इन्फर कि भाई कि वो क्यों डाल रहे हैं वो सीन, राइट? वो किसको कहना चाह रहा है ये बात। और आई थिंक जो आपने भी कहा कि उसने खुद पता नहीं कहा है कि उसकी मैं इससे भी ज्यादा वायलेंट फिल्म बना सकता हूँ, या फिर जो भी है उसने कबीर सिंह बनाने के बाद, आई डोंट नो, पर इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक अगर आप आके ये कह रहे हैं कि भाई कि मैं एक लड़की को चांटा मार सकता हूँ। मेरे को तो शायद आई थिंक वहीं पे फुल स्टॉप हो जाना चाहिए, कि लाइक वहीं पे आपको रोक देना चाहिए कि इंटरव्यूअर को, कि भाई आप क्या बोल रहे हो, राइट? बिकॉज इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से, इट्स अ रॉन्ग थिंग टू से, राइट? कि वो आपको इजाजत नहीं होनी चाहिए वो कहने की। पर हाँ चलिए, हमने एनिमल के बारे में भी आई थिंक कितने देर बात कर ली, आधा घंटा एनिमल को भी दे दिया। तो कुछ और आपको कहना है डर के बारे में, क्योंकि हम डाइग्रेस कर गए एनिमल पर ठीक है।
नहीं, बस मैं यही कहूंगा कि यार वो 31 साल के बाद तो सब चौधरी बन सकते हैं, इंक्लूडिंग यू एंड आई, तो हम बैठ के एक फिल्म को कंपेयर कर सकते हैं, और हमने किया भी है. हम ज्यादातर 93 की दूसरी फिल्म है जो हमने की है, तो आई थिंक तुमने तो काफी ग्राउंड कवर किया है इसमें. और मैं बहुत ही सहमत हूँ कि फिल्म और छोटी हो सकती थी, सनी के बारे में, शाहरुख के बारे में, और ग्लोरिफिकेशन हुई है कि नहीं. बाकी तो आई थिंक सिलसिला बातचीत का जारी रहेगा, मुझे नहीं
बट
लगता कुछ
हाँ,
बचा है।
तो मैं तो बस यही कहूंगा कि जो सुनने वाले हैं, अगर आप यहां तक रुके हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जाके जरूर देखिए डर एक बार, और आपको शाहरुख खान की वो झलकियां दिख जाएंगी, क्योंकि ये फिल्म जब 93 में आई थी तो उस समय तक वो उस लेवल के स्टार बने नहीं थे, पर जब आप वो फिल्म, मैं समझता हूँ कि जब आप डर दोबारा भी देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि वाई शाहरुख खान वॉज डेस्टिन्ड फॉर बिगर थिंग्स। तो हाँ, तो वहीं पे चलिए खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को।
हाँ बिल्कुल, एक लैंडमार्क फिल्म है उनके करियर की, जैसे बड़े बड़े और एक्टर्स सितारों ने की है। तो हाँ बिल्कुल, साहिल ने सही बात कही। और खत्म करने से पहले एक फिर काइंड रिमाइंडर कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हमें सुन रहे हैं, चाहे गूगल पॉडकास्ट हो, एप्पल, स्पॉटिफाई, वहां जाके एक आधा रिव्यू डाल दीजिए। अच्छा ही डालिए, बुरा भी चलेगा, पर आई थिंक अच्छा ज्यादा प्रेफर रहेगा। और रेटिंग भी दे दीजिए, ताकि और कोई आपकी तरह ही, हमारी तरह और आपकी तरह कोई फिल्मी कीड़ा हो जो ऐसी बातें सुनना चाहता हो, अपनी जिंदगी के 2 घंटे एक पॉडकास्ट को देना चाहता हो। तो आई थिंक हमारी थोड़ी लिसनरशिप भी बढ़ेगी और
हाँ,
अवेयरनेस भी बढ़ेगी। अगली फिल्म
और
बहुत ही
अगर
जल्दी आएगी। हाँ सॉरी,
अगर अच्छा फीडबैक हो तो आप बिल्कुल एप्पल पे और स्पॉटिफाई पे और जहां पे भी आप सुन रहे हैं वहां पे दीजिए, और अगर बुरा हो तो बिल्कुल जरूर दीजिए, लेकिन वो मुझे आप डीएम कर दीजिए या साकिब भाई को डीएम कर दीजिए ट्विटर पर, हमारी आईडी भी हम छोड़ देंगे।
नहीं साहिल को ही करना, मेरा दिल थोड़ा कमजोर है, मैं बुरा फीडबैक नहीं ले
तो
पाऊंगा।
हाँ, और बाकी सुनते रहिए हमारी पॉडकास्ट, हमें अगर कोई फीडबैक है आपके पास तो वो भी जरूर शेयर करिए कि हम कैसे इस पॉडकास्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं और कैसे इसे बेहतर बना सकते हैं।
बिल्कुल, इससे अच्छे शब्द नहीं हो सकते इस एपिसोड को खत्म करने के लिए। एक बार फिर इजाजत चाहेंगे, और बहुत ही जल्द एक और फिल्म के साथ फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय।
बिल्कुल, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, गुड बाय।